जय राधा माधव कुंज बिहारी,
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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
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 जय राधा माधव कुंज बिहारी,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन
ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी,
यमुना तीरवन चारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
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 राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाले राधे। सभी लोग प्रेम से गाइए राधे 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 बरसाने वाले राधे, राधे 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 बरसाने वाले राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे,
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 राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे राधे बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे।
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा,
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा,
हमारो धन राधा परमधन राधा 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 राधा,
परमधन राधा 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 राधा,
परमधन राधा 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 राधा,
परमधन राधा 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 राधा।
हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा,
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा,
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा,
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
राधे 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 बरसाने वाले राधे, राधे 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 बरसाने वाले राधे,
राधे 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 बरसाने वाले राधे, राधे 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 बरसाने वाले राधे,
राधे 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 बरसाने वाले राधे,
राधे 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 बरसाने वाले राधे,
राधे 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 बरसाने वाली 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 राधे,
राधे 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 बरसाने वाली।
बोलो राधे राधे
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 राधे राधे।
बोलिए सब लोग
राधे राधे
राधे राधे
राधे राधे
राधे राधे।
वृंदावन में
राधे राधे,
सुनरत गांव में
राधे राधे,
काली जहां पर
राधे राधे,
पान गली में
राधे राधे,
मान गली में
राधे राधे,
कुमन गली में
राधे राधे,
कुंज सेवा में
राधे राधे,
प्रेम गली में
राधे राधे,
सिंगर घाट में
राधे राधे,
पीर घाट में
राधे राधे,
देशी घाट में
राधे राधे,
निधि वन में
राधे राधे,
वंशी वट में
राधे राधे,
ज्ञान गोदरी
राधे राधे,
ब्रह्म कुंड में
राधे राधे,
अटल वन में
राधे राधे,
निहार वन में
राधे राधे,
गोपाल वन में
राधे राधे,
वेणुकोप में
राधे राधे,
निकुंज वन में
राधे राधे,
राधा वन में
राधे राधे,
झूलन वन में
राधे राधे,
भांडिर वन में
राधे राधे,
मधुवन में
राधे राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
बोलो राधे राधे,
राधे राधे
राधे राधे,
राधे राधे
जतिपुरा में
राधे राधे,
गोवर्धन में
राधे राधे,
दान घाटी में
राधे राधे,
पाप मोचन कुंड में
राधे राधे,
शंकर चरण कुंड में
राधे राधे,
गोविंद कुंड में
राधे राधे,
भैरव कुंड में
राधे राधे,
गौरी कुंड में
राधे राधे,
पुछड़ी का लोटा
राधे राधे,
कुसुम सरोवर
राधे राधे,
श्याम कुटीर में
राधे राधे,
नारद कुंड में
राधे राधे,
ग्वाल पोखरा
राधे राधे,
हरि गोकुल में
राधे राधे,
रमन रति में
राधे राधे,
गोपेश्वर महादेव
राधे राधे,
बांके बिहारी
राधे राधे,
स्नेह बिहारी
राधे राधे,
मदन मोहन जी
राधे राधे,
गोपीनाथ जी
राधे राधे,
राधा दामोदर
राधे राधे,
राधा विनोद जी
राधे राधे,
साक्षी गोपाल में
राधे राधे,
राधा माधव
राधे राधे,
राधा वल्लभ
राधे राधे,
जुगल किशोर जी
राधे राधे,
राधा रमण जी
राधे राधे,
अष्ट सखी जी
राधे राधे,
केशव देव जी
राधे राधे,
द्वारकाधीश जी
राधे राधे,
ईश्वर महादेव
राधे राधे,
गंगेश्वर महादेव
राधे राधे,
सूर्य घाट में
राधे राधे,
युगल घाट में
राधे राधे,
बिहार घाट में
राधे राधे,
अंधेर घाट में
राधे राधे,
पानी घाट में
राधे राधे,
केली कदम में
राधे राधे,
भद्रा जी में
राधे राधे,
जन्मभूमि में
राधे राधे,
जन्मभूमि में
राधे राधे,
गोपेश्वर महादेव
राधे राधे,
विश्राम घाट में
राधे राधे,
स्वामी घाट में
राधे राधे,
मधुकुंड में
राधे राधे,
मधुवन बिहारी
राधे राधे,
अक्र भवन में
राधे राधे,
ताल वन में
राधे राधे,
कुमुद वन में
राधे राधे,
भराई गांव में
राधे राधे,
केसरी गांव में
राधे राधे,
बहुला वन में
राधे राधे,
संतान कुंड में
राधे राधे,
चोरा गांव में
राधे राधे,
इंद्र कुंड में
राधे राधे,
सुरभि कुंड में
राधे राधे,
ऐरावत कुंड में
राधे राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे,
राधा दामोदर
राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे,
राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे,
जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा,
जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय
गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय
गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय,
गौरनिताय जय गौरनिताय, प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद
प्रभुपद प्रभुपद प्रभुपद
जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद
प्रभुपद प्रभुपद
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद
नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
श्री राधा दामोदर भगवान की
जय
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की शशि गौर निताय की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय
वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के इस तृतीय दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत और भागवत का श्रवण इस संसार में सबसे बड़ा साधन है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को यह श्रीमद् भागवत कथा मात्र 7 दिन तक सुनाए और महाराज परीक्षित 7 दिन में भगवान के धाम को प्राप्त हुए। यह बात तीनों लोकों में विदित हो गई। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में जब यह बात सुनी कि मात्र 7 दिन में भागवत श्रवण करके कोई भगवान के धाम में कैसे जा सकता है, पूरा दाता अपि विस्मित, ब्रह्मा जी भी इस बात को सुनकर विस्मित हो गए, संशय में पड़ गए। जिस भगवान का दर्शन करोड़ों वर्षों तक ध्यान करने पर भी नहीं होता है, बड़े बड़े योगी लोग यत्न करते रह जाते हैं परंतु भगवान के चरण का भी दर्शन नहीं कर पाते हैं, और ऐसी स्थिति में मात्र 7 दिन भागवत कथा सुनकर भगवान का धाम प्राप्त होंगे। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने सोचा ब्रह्मलोक में बैठे बैठे कि यदि भागवत की इतनी महिमा है तो मुझे परीक्षा लेनी होगी, देखना होगा। तब ब्रह्मा जी ने सत्य लोके तुला बंधवा, ब्रह्मा जी ने सत्य लोक अर्थात ब्रह्म लोक में ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की, ब्रह्मा जी ने यह परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मलोक में तुला बनवाई। तुला जानते हैं ना, माताएं सब्जी मार्केट में जाती हैं सब्जी खरीदने, तो वजन करके जो देते हैं वजन का कांटा। ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ी तुला बनाई और एक पल्ले में ब्रह्मा जी ने भागवत कथा श्रवण के फल को रखा और दूसरे पल्ले में ब्रह्मा जी ने इस संसार में हजारों वर्षों तक ध्यान करने का फल रखा। एक और भागवत कथा श्रवण का फल, भागवत कथा 7 दिन श्रवण का फल एक पल्ले में, और एक पल्ले में हजारों वर्षों तक ध्यान करने का फल। और ब्रह्मा जी ने जब कांटा ऊपर किया तो भागवत कथा 7 दिन श्रवण करने का फल ज्यादा हुआ, वो ध्यान का फल हल्का हो गया। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान रूपी फल को हटाकर हजारों वर्षों तक तपस्या का फल रखा, परंतु भागवत सप्ताह के फल के सामने वह तपस्या का फल भी हल्का हो गया। दान का फल रखा परंतु वह भी हल्का हो गया। ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए, अरे बाप रे, 7 दिन कथा सुनने का फल इतना। तब ब्रह्मा जी ने सभी साधनों को, दान, होम, हवन, तपस्या, यज्ञ, सब एक पलरे में रखा और एक पलरे में 7 दिन भागवत कथा श्रवण करने का फल और फिर ऊपर किया, लेकिन फिर भी भागवत कथा श्रवण का फल ज्यादा ही रहा। तब ब्रह्मा जी को विश्वास हुआ कि संसार में सभी साधनों से श्रेष्ठ भागवत कथा श्रवण करना। तो भागवत कथा की यह महिमा है और भागवत में भी भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण करना ये तो जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। सबको ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता। शास्त्र में कहा गया है, जन्मांतरे भवेत पुण्य श्रीमद भागवतम लभेत। ये श्रीमद भागवत कथा किसके नसीब में होती है? कौन ये भागवत कथा सुन सकते हैं? कहते हैं जन्मांतरे भवेत पुण्यम। पिछले जन्मों में करोड़ों करोड़ों जन्मों से जिसने बहुत पुण्य किए हैं और वे सभी पुण्य का उदय जब एक साथ होता है तब व्यक्ति भाग्यशाली बनता है, और ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। पुण्य के पुंज के बिना यह भागवत किसी को प्राप्त हो नहीं सकती है। और मानो यदि कोई सुकृति बिना सुकृति के भागवत मंडप में आ भी जाए तो वह टिक नहीं सकता है। आएगा, ऐसे हिलेगा 15-20 मिनट, फिर चला जाएगा वापस। बिना सुकृति के ये भागवत कोई नहीं सुन सकता, इसके लिए सुकृति चाहिए। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को बहुत भूख लगी है और सोलापुर की सबसे बड़ी होटल के सामने खड़ा है और भोजन करने के लिए वो होटल में चला जाए परंतु जेब में मात्र 5 रुपया है। अब उस होटल में जाकर मेनू खोलता है तो वहां पर चाय ही 50 रुपए की मिलती है। तुरंत उस होटल से निकल जाता है और रास्ते में जो भी वड़ा पाव इत्यादि मिलता है खा लेता है। जिसके पास धन कम होता है वो बड़ी होटल में नहीं जा सकता, वो तो रास्ते का ही खा सकता है। ठीक उसी प्रकार जिसके पास सुकृति रूपी धन होता है वही भागवत कथा में आ सकते हैं, नहीं तो रास्ते में भटकते रहेंगे। सुकृति नहीं है भागवत नहीं सुन सकते। हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारी सुकृति का उदय हो चुका है और हम सब भागवत श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। गत सत्र में हमने श्रवण किया अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जी को लेकर वृंदावन से मथुरा आए हैं। जब अक्रूर जी कृष्ण को लेकर मथुरा में आए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मार्गे ग्राम जना राजन तत्र तत्रोपसंगता वासुदेव सुतो वीक्ष प्रीता दृष्टिम न चाददु। हे राजन, हे परीक्षित, जब अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को रथ के ऊपर बिठाकर मथुरा में ला रहे थे, मथुरा की गलियों में मथुरा के मार्ग से जब आ रहे थे, तो मथुरा में रहने वालों ने कई दिनों से कृष्ण के बारे में सुना था, कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं, इतने लोगों को मारे हैं, इतनी सुंदर लीला करते हैं। कृष्ण के बारे में मथुरा वासियों ने बहुत सुना था, परंतु कृष्ण को कभी देखा नहीं था। और अब सबको पता चला कि अक्रूर जी कृष्ण को लेकर मथुरा आ रहे हैं, तो मथुरा में रहने वाले सब लोग मार्ग पर आ गए, सब लोग रास्ते पर आए कृष्ण का दर्शन करने के लिए। हे राजन, मार्गे ग्राम जना तत्र तत्र उपसंगता, मथुरा के लोग और प्राय मथुरा की स्त्रियां और मथुरा के पुरुष आए और स्थान स्थान पर खड़े थे, पांच पांच मिनट के अंतर में बहुत बड़ा ग्रुप खड़ा था कृष्ण का दर्शन करने के। और उस समय कृष्ण की छवि इतनी सुंदर लग रही थी, कृष्ण इतने सुंदर लग रहे थे, वासुदेव सुतो वीक्ष्य, उस वसुदेव जी के पुत्र को देखकर प्रीता दृष्टिम नच आ ददू, वे लोग उस कृष्ण को देखते रह गए और देखते देखते कृष्ण की ओर से दृष्टि वापस नहीं आ रही थी, बस एक दृष्टि से देख लिया तो देख लिया, वह दृष्टि वापस नहीं खींच सकते थे, क्योंकि कृष्ण का रूप ही इतना मधुर था, इतना सुंदर था। भगवान श्री कृष्ण अद्भुत सुंदर है, और एक बार जो कृष्ण की सुंदरता को देख लेता है, थोड़ा आवाज कम करो, हरे कृष्णा 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 हरे
हरे राम राम राम,
एक बार कोई कृष्ण की सुंदरता को देख लेता है तो फिर वह मुग्ध हो जाता है। दक्षिण भारत में एक व्यक्ति अपनी पत्नी में बहुत आसक्त था, रात दिन अपनी पत्नी को देखते रहता था। एक दिन उनकी पत्नी मंदिर में कुछ दर्शन करने के लिए गई, रंगनाथ मंदिर में, तो ये व्यक्ति छाता लेकर, पत्नी सीधी सीधी चल रही है, उल्टा उल्टा चल रहा था पत्नी के सामने देखते हुए। तब मंदिर के पुजारी आश्चर्य में पड़ गई, ऐसा उल्टा उल्टा, रास्ते में पत्थर आएगा तो गिर जाएगा, उसे कोई भय नहीं है। पुजारी ने उसे बुलाया, आप ऐसे उल्टा उल्टा चल रहे हो, डर नहीं लगता है, और ऐसे क्यों चल रहे हो? तब उस व्यक्ति ने कहा, देखो मैं रूप का पुजारी हूं, मुझे मेरी पत्नी बहुत सुंदर लगती है, मुझे मेरी पत्नी का रूप बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसे रात दिन देखना चाहता हूं, एक पल भी उसे दूर होना नहीं चाहता हूं। वे मंदिर आ रही थी तो मैं छाता लेकर आ गया उनके साथ। तब पुजारी ने कहा कि यदि इससे अच्छा रूप देखने मिल जाए तो मैं उसे देखूंगा, मैं हूं तो रूप का पुजारी, यदि आप मुझे इससे अच्छा रूप बताओगे तो मैं उसको देखते रहूंगा। तब उस रंगनाथ मंदिर के पुजारी उस रूप के पुजारी को लेकर भगवान विष्णु के पास आए और आकर भगवान विष्णु को प्रार्थना किए, प्रभु आप इस संसार में सबके ऊपर कृपा बांटते हो, आज इन पर अपनी कृपा बांट दो, समुद्र मंथन में जो मोहिनी रूप धारण किया था कृपा करके इसे दिखा दो।
भगवान वैसे ही पुरुष रूप में बहुत सुंदर लगते हैं, परंतु जब स्त्री का रूप धारण करते हैं तब तो बड़े बड़े लोग लट्टू हो जाते हैं। आपको पता होगा समुद्र मंथन प्रसंग में देवता और असुर अमृत प्रकट करने का बहुत प्रयास किए, और अंत में जब अमृत प्रकट हुआ तो असुर लोग अमृत लेकर भाग गए और देवता लोग देखते रह गए। भगवान को प्रार्थना की, प्रभु इतनी महा मुसीबत से अमृत निकला और ये लोग लेकर भाग गए, प्रभु आप कुछ कीजिए। उसी समय भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया और ये लोग भागते भागते अमृत के कलश को छीन रहे थे, पहले मैं पीऊंगा। आप फुटबॉल नहीं रग्बी जानते हैं, रग्बी बॉल को लेकर सब लोग घूमते हैं दौड़ते हैं, ऐसे सब असुरगण छीन रहे थे मैं पीऊंगा। और उसी में सामने की ओर से भगवान विष्णु मोहिनी का रूप लेकर आए, ठुमका लगाते। अरे सब असुरों की नजर मोहिनी के ऊपर गई और अब अमृत भूल गए और मोहिनी दिमाग के ऊपर सवार हो गई। सब लोग कॉलर सीधा कर लिए, एकदम इसरी टाइट एकदम खड़े हो गए। यार ये अमृत तो कभी भी मिलेगा, लेकिन ये दर्शनामृत कभी नहीं मिलेगा। बाप अपने बेटे के आंख के ऊपर हाथ रख लेता था, बेटा तू मत देख, तुझे तो बहुत मिलेगी। बेटा अपने बाप को कहता था, पिताजी आप बूढ़े हो गए हो, मुझे देखने दो। मोहिनी को देखकर अमृत को भूल गए। अरे सब लोग मोहिनी के पास जाकर सीधा सीधा खड़ा रह गए। पता है ना, पुरुष लोग बहुत चंचल होते हैं, यहां वहां घूमते, लेकिन स्त्री बाजू में आ गई तो सीधा बैठ जाते हैं। तो सब लोग खड़े रह गए और सब लोग उनमें से जो सरदार था, ए अमृत का कलश यहां लाओ, और लेकर मोहिनी के हाथ में दे दिया, देखो ये अमृत आप रखो। अब तक इतना झगड़ रहे थे अमृत के लिए, वो अमृत का घड़ा मोहिनी के हाथ में दे दिया और मोहिनी को कहा कि देखो ये अमृत है और ये अमृत आप अपने हाथों से हमको पिलाओ, हम आपके हाथों से अमृत पीना चाहते हैं। बोले ये अमृत है किसका? तो ये लोग को तो शरीफ बनना था ना। कहा कि देखो हम लोग कश्यप जी के पुत्र हैं और हमारे भाई देवता पीछे पीछे आ रहे हैं और हमने और उन्होंने मिलकर अमृत प्रकट किया है। बोले देवता कहां पर है? बोले पीछे पीछे आ ही रहे हैं। बोले आप हम सबको अमृत अपने हाथ से बांटो। अब मोहिनी इतनी सुंदर लग रही थी, अब शुरू किया मोहिनी ने, देखो ये अमृत आप रखो, मैं अमृत नहीं बांट सकती। बोले क्या हुआ? कहा देखो जीवन में कभी सर्विस नहीं किया मैंने, कभी किसी को पानी भी नहीं परोसा, मैं अमृत कैसे परोसूं? बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने हाथ से पीना, आपके हाथ से पीना चाहते। मोहिनी अपनी भाषा में कहती है, देखो कभी किसी को परोसा नहीं है, किसी को कम मिला, किसी को ज्यादा मिला, कोई बात नहीं। दो तीन बड़े बड़े असुर थे, बोले देखो मैं इतनी भुलक्कड़ हूं, कभी किसी को अमृत देना भूल भी गई तो। बोले तुमको हमने देख लिया, बस नहीं भी मिलेगा चलेगा। दो तीन बोल रहे थे, ऐसा कैसे चलेगा? तो असुरों के जो सरदार थे दो तीन मार कर आ गए उसे, क्यों नहीं चलेगा, सब चलेगा। इतनी सुंदर स्त्री है बिचारी ने कभी पानी भी नहीं परोसा, मान लो भूल गई तो क्या अंतर पड़ता है? आप परोसो, अपने रूप से सबको मंत्र मुग्ध कर दें। बोले आपके भाइयों को तो बुलाओ। असुरों को बिठाया, देवताओं को बिठाया और असुरों के जो बड़े बड़े सरदार थे उनको बुलाकर कहा, देखो ये अमृत का घड़ा है ना, इसमें जो ऊपर पतला पतला अमृत है ना, इनमें देवताओं को पिला देती हूँ और नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत में तुम्हें पिलाऊंगा। अब बताइए अमृत में क्या पतला और क्या गाढ़ा। लेकिन ये मोहिनी के रूप में इतने मोहित हो गए, वो छास थोड़ी न थी हमारे जैसी कि जम जाती, वो नीचे बैठ जाते और पानी ऊपर रह जाता है, नहीं। लेकिन मोहिनी के बाद में बोले पिला दो, भगाओ देवताओं को पिलाकर जल, हम आराम से पिएंगे। मोहिनी ने देवताओं को अमृत पिला दिया। मैं यही कह रहा हूं कि भगवान वैसे ही सुंदर है। ब्रज वृंदावन में कृष्ण की सुंदरता को देखकर कृष्ण के जो गोप ग्वाल सखा है कृष्ण को गाली देते हैं, अरे सारे तो लड़का बना है, इतने लोगों के नाक में दम करके रखा है, किसी को चैन से जीने नहीं देता है, बंसी बजाता है। भागवत में वर्णन है कृष्ण जब अपने घर से निकलते थे तो गोपियां मंत्र मुग्ध हो जाती थी, और उसमें भी कृष्ण जब अपनी बांसुरी बजाते थे इस संसार में जड़ वस्तु चेतन हो जाती थी, पत्थर पिघल जाते थे और 2400 घंटों बहने वाला पानी पत्थर बन जम जाता था, प्रकृति पलट जाती थी भगवान की सुंदरता को देखकर, और गोपियां अपना काम करना भूल जाती थी। सूरदास जी ने लिखा है ना, बांसुरी बजाए आज नंद को मुरारी। जब बांसुरी बजाते थे ब्रह्मा वेद पढ़ना भूल जाते थे और साधक लोग समाधि से च्युत हो जाते थे। सबके नाम कृष्ण के सखा कहते थे, अरे सारे ब्रज की गाली है, अरे सारे तो लड़का बना है तो इतने लोगों के नाक में दम करके रखा है, यदि तू लड़की बना होता तो लाखों लोग गला काट कर मर गए होते, कट जाते गला करोड़न के, तुझे प्राप्त करने में कई लोग एक दूसरे को मार कर मर गए होते। अद्भुत सुंदरता है कृष्ण। तो उस रंगनाथ जी के पुजारी ने प्रार्थना की, प्रभु इसे आप एक मोहिनी रूप की झलक दिखा दीजिए, ये संसार के भौतिक रूप में फंसा है। तो पुजारी की प्रार्थना से भगवान ने अपना मोहिनी रूप धारण किया, और उस रूप के पुजारी ने मोहिनी रूप देखा, और भगवान के उस रूप को देखकर वह रूप का पुजारी बस वहीं पर बैठ गया। अब पत्नी उसके पास आई, चलो चलो अजी सुनते हो, घर पर नहीं जाना है, बोले तुम जाओ मैं इधर बैठूंगा। उस दिन से वह बहुत बड़ा भक्त हो गया। कहने का तात्पर्य ये है कृष्ण की सुंदरता अद्भुत है, अद्भुत। रूप गोस्वामी एक ग्रंथ लिखे हैं जिसका नाम है पद्यावली। रूप गोस्वामी पद्यावली में एक श्लोक लिखते हैं कि यदि आपको भौतिक जीवन में ठीक से रहना है तो कभी वृंदावन मत जाना। यदि आप चाहते हो कि मैं अच्छी तरह से बिजनेस करूं, पत्नी और बच्चों के साथ पूर्ण रूप से आसक्त होकर रहूं, तो भूल से भी वृंदावन मत जाना, और वृंदावन में चले भी गए तो यमुना के किनारे मत जाना, और यमुना के किनारे चले गए, मान लो भूल से भी यमुना के किनारे चले गए तो तीनों ओर से टेढ़े हाथ में बांसुरी बजाने वाले कृष्ण के सामने भूल से भी मत देखना। यदि भूल से भी देख लिया कृष्ण के सामने, जीना मरना हराम हो जाए। फिर बिजनेस भूल जाओगे, पत्नी बच्चा धन सब कुछ भूल जाओगे, और लग जाओगे भगवान कृष्ण की भक्ति में। पता है ना, जो भजन में लग जाते हैं तो फिर भौतिक संसार में पीछे हो जाते हैं, मत जाना। ब्रज वृंदावन में किसी गोप का विवाह होता था और कोई पत्नी आती थी तो उनके सास का पहला ट्यूशन यही होता था, विवाह के पहले दिन 3 घंटे का प्रवचन करती थी उनकी सास। क्या देखो, पनघट में पानी भरने तुम जाओगी तो आजू बाजू में कभी मत देखना, सीधा सीधा देख कर जाना, पानी भरकर सीधा सीधा घर पर आ जाना। तो वो पूछती थी, मैया यदि आजू बाजू में देख भी लेंगी तो क्या होगा? बोले हमारे वृंदावन में एक बहुत बड़ा ग्रह है। बोले ये कौन सा ग्रह है? ऐसे तो बहुत सारे ग्रह का नाम सुना है, सोम मंगल ग्रह और सबसे भारी शनि ग्रह। शनि ग्रह जानते हैं? ये शनि का नाम लेकर एक कथा याद आ गई, कह दूं। ये शनि देव जो है बहुत बड़े ग्रह है, बहुत भारी ग्रह, जिसके पीछे पड़ जाते हैं तो पूरा साफ सफाई कर देते हैं। एक दिन की बात, ये शनि जी और लक्ष्मी जी रास्ते में मिल गए और शनि जी उस दिन शनि जी माने शनि देवता कुछ एक्सरसाइज करके मसल वसल बनाकर गए होंगे शनि देवल की तरह और लक्ष्मी जी भी कुछ तैयार होकर मेकअप करके आई होगी। तो शनि देवता ने पूछा लक्ष्मी जी को कि आज मैं कैसा लग रहा हूं, स्किन टाइट टी शर्ट पहना होगा शायद। लक्ष्मी जी को पूछा कि आज मैं कैसा लग रहा हूं, लक्ष्मी जी ने कहा तुम्हारी छोड़ो मैं कैसी लग रही हूं। शनि देवता ने पूछा कि आप ये बताओ मैं कैसा लग रहा हूं, लक्ष्मी जी ने कहा तुम पहले ये बताओ मैं कैसी लग रहा हूं। अब दोनों एक दूसरे के सामने। शनि ने कहा, शनि देवता ने कहा कि देखो आज तुमसे मैं अच्छा लग रहा हूं। लक्ष्मी जी ने कहा चलो भागो यहां से, तुमसे तो आज मैं अच्छी लग रही हूं। दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन हो गई कौन अच्छा लगता है। उतनी देर में बाजू में से नारद मुनि निकले तो शनि ने नारद जी को बुलाया, ए नारद जी यहां आओ, यहां आओ, अब आप ही फैसला करो हम दोनों में से सुंदर कौन है। नारद जी तो सोच में पड़ गए, यदि इसको सुंदर कह दिया, शनि को सुंदर कहा तो लक्ष्मी जी की कृपा उठ जाएगी और लक्ष्मी जी को सुंदर कहा तो ये शनि भारी पड़ जाएगा। नारद जी मन में सोच लिए कुछ भी हो जाए मुझे डिसीजन नहीं देना है, ये अंपायर बनना मुझे नहीं बनना। नारद जी ने कहा देखो भाई मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मैं क्या जानू सुंदरता क्या होती है, है? मुझे भाई छोड़ दो मैं तो जा रहा हूं, आप किसी को और को पूछ लो। शनि देवल ने कहा देखो 2.5 किलो का हाथ। दुनिया से उड़ जाए उड़ जाओगे कुछ है ना डायलॉग। नारद जी ने कहा अब क्या किया जाए। तब नारद जी बुद्धिमान, कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, नारद जी तो बहुत बुद्धिमान थे, कहा कि आप दोनों मेरे मुझे चिपक कर खड़े हो मैं कैसे डिसीजन लूंगा, थोड़े दूर जाओ है? थोड़े दूर जाओ और दूर से आओ, फैशन शो होता है ना, आप थोड़ा फैशन शो करो। ये फैशन शो उस दिन से शुरू है, ये नया नया नहीं है। ये शनि ने और लक्ष्मी जी ने दोनों ने फैशन शो किया, दोनों थोड़ा चले ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये दोनों गए और जाकर आए, शनि और लक्ष्मी जी ने कहा कि बोलो बताओ अब कौन सुंदर है। नारद जी तो सोच लिए थे देखो लक्ष्मी जी जब आ रही थी तब बहुत सुंदर लग रही थी और शनि जी आप जा रहे थे ना तब बहुत सुंदर लग रहे थे। बात भी सत्य है, लक्ष्मी का आना हमारे लिए बहुत अच्छा है और शनि का जाना ही बहुत अच्छा है। दोनों प्रसन्न हो गए, नारद मुनि नारायण करके निकल गए। तो इस प्रकार से कभी कभी हम लोग ग्रहों में उलझ जाते हैं परंतु कृष्ण भक्त कभी इसमें उलझते नहीं है। तो ब्रज वृंदावन में जब कोई विवाह करके आती थी तो सास कहती थी कि देखो पनघट में जा रही हो पानी भरने के लिए, कभी आजू बाजू में मत देखना। पूछा कि माँ क्या होगा, बोले यहाँ वृंदावन में बहुत बड़ा ग्रह है। बोले कौन सा ग्रह, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि। बोले ये नहीं, काला ग्रह है वृंदावन में, काला। ये एक बार किसी के मन पर चढ़ गया तो उतरने का नाम नहीं लेता है, एक काला ग्रह और कोई नहीं, कृष्ण रूपी काला ग्रह था। इतने सुंदर है कृष्ण, कृष्ण की सुंदरता अद्भुत है। तो अक्रूर जी कृष्ण को रथ पे बिठाकर मथुरा में आए प्रथम बार और मथुरा के सब लोग अपनी दृष्टि से कृष्ण को देख रहे थे। प्रयास करने पर भी वह दृष्टि कृष्ण से हट नहीं रही थी। कभी कभी होता है ना कि हम दृष्टि हटाना चाहते हैं परंतु हटती नहीं है, नहीं हट रही थी। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण मथुरा की ओर प्रवेश कर रहे थे और उतने में वृंदावन से नंद बाबा इत्यादि गोप सखा भी मथुरा में पहुंच गए। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, तावद व्रजो कस तत्र नंद गोपादयो ग्रत पुरोप पवन साध्य प्रतीक्षन्तोवतस्तिरे। उस समय ब्रज वृंदावन से नंद बाबा इत्यादि गोप सखा आए थे और मथुरा के किसी उपवन में बैठे थे। मथुरा में एक उपवन था। उपवन माने जानते हैं, दो चीज है, वन और उपवन। वन का अर्थ होता है जो नेचुरल प्रकृति के द्वारा जो बनता है उसे वन कहते हैं, परंतु कभी कभी शहरों में गार्डन बनाए जाते हैं, बगीचे, जोगर्स पार्क, जो किसी मनुष्य के द्वारा उगाए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं, उसे उपवन कहा जाता है, वन और उपवन। तो कंस के किसी कर्मचारी के द्वारा बनाया हुआ एक उपवन था। नंद बाबा इत्यादि सब गोप सखा वहां उपवन में आकर बैठे थे और आकर व्रजोकृष प्रतीक्षत अवतस्थिरे। नंद बाबा इत्यादि गोप सखा भगवान श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मथुरा का जो गेट था, मेन गेट, उस गेट के बाहर प्रतीक्षा करके बैठे थे। ये लोगों ने सोचा था कि कृष्ण को अकेले मथुरा में प्रवेश नहीं होने देंगे, जब कृष्ण मथुरा में प्रवेश करेंगे तो हम कृष्ण के साथ रहेंगे, न जाने कोई आपत्ति भी आ सकती है। वास्तव में ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम था। वैसे ब्रजवासियों को पता था कृष्ण ने ही पुतना को मारा, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, परंतु फिर भी ये ब्रजवासीगण कृष्ण को बहुत प्रेम करते थे। वात्सल्य भाव था कृष्ण के प्रति, अपना पुत्र मानते थे और इसीलिए कृष्ण का ध्यान रखने के लिए इस बार मनो मन में प्रश्न हो सकता है कि मथुरा में कृष्ण के ऊपर आपत्ति आ सकती थी तो क्या ब्रजवासी हो के ऊपर आपत्ति नहीं आ सकती थी? आ सकती थी। कृष्ण के ऊपर कोई वार करे तो अन्य किसी ब्रजवासी के ऊपर भी वार हो सकता था, परंतु ब्रजवासियों के दिल और दिमाग में मात्र कृष्ण भरे हुए हैं। हमें कुछ भी हो जाए परंतु कृष्ण को कुछ नहीं होना चाहिए। ये है ब्रजवासियों के, ब्रज में रहने वाले भक्तों की भावना। आपने पूतना वध की कथा सुनी होगी। जब भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के थे, पूतना नाम की राक्षसी का वध किया और पूतना का शरीर 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा शरीर था और भगवान श्री कृष्ण उसके स्तन के ऊपर छोटे से बैठे थे। और जब पूतना की लाश गिरी थी, ये रात का समय था, वह राक्षसी की लाश गिरी हुई है, उस समय सभी गोपियां, यशोदा तो कृष्ण को देखकर मूर्छित हो गई, परंतु अन्य सभी गोपियां गई और देखा कि कृष्ण उस लाश के ऊपर है और सभी गोपियां दौड़कर उस पूतना की लाश के ऊपर चढ़ गई, कृष्ण को उठा लिया, अपने हृदय से लगाकर नीचे उतार दिया। प्रसंग शायद आप जानते हो, परंतु इस पर विचार कीजिए। आज भी हमारे भारत में, पूरी दुनिया में एक परंपरा है कि जब किसी मृत देह को, किसी का अवसान, निधन हो जाता है, कोई घर पर मर जाता है, तो उसकी जब शमशान यात्रा जाती है तो उसमें स्त्रियों को नहीं लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्त्रियों का हृदय जो है बहुत कोमल होता है, उस लाश को देखकर या लाश को जलते देखकर स्त्री डर जाती है, इसलिए मात्र वहां पुरुष को ही प्रवेश दिया जाता है। तो विचार करो कि ये पूतना कोई साधारण मनुष्य नहीं थी, ये तो राक्षसी थी और 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी राक्षसी, और उसमें भी मरी हुई मृत देह लाश पड़ी थी। क्या गोपियों को भय नहीं लगा उस लाश के ऊपर चढ़ने के लिए? तो वहां पर आचार्य गण कहते हैं, गोपियां कृष्ण को इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं, कृष्ण के लिए वे अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। हमें कुछ भी हो जाए परंतु कृष्ण को कुछ नहीं होना चाहिए, ये गोपियों का, ये ब्रजवासियों का ये भाव है। आप द्वारका की यह कथा जानते होंगे, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण जब द्वारका में रहते थे तो बहुत दुखी रहते थे। वैसे तो द्वारका में कृष्ण पूर्ण ऐश्वर्य, कृष्ण के पास जो ऐश्वर्य था ऐसा दुनिया में किसी के पास नहीं। एक तो कृष्ण जिस द्वारका में रहते थे वह द्वारका नगरी सोने की बनी हुई थी, 24 कैरेट गोल्ड, और उसमें भी 16,108 पत्नी है। कभी कभी विचार होता है कि इतने लोगों को यहां तो एक को ही संभालना भारी पड़ जाता है। ये 16,108, परंतु प्रभु संभालते थे, वे अपना स्वरूप 16,108 में बांट देते थे। और वहां पर भूखमरी नहीं थी, सभी पत्नियों के लिए अलग अलग महल बनाए थे कृष्ण ने, और सभी पत्नियों की इच्छा पूर्ण करते थे। ऐसा नहीं कि आज की नारियों की तरह पतियों को कहना पड़ता है कि आज मेरे लिए ये लेकर आना वह लेकर आना, नहीं। वे जो भवन थे चिंतामणि और पारस मणि से बने हुए थे, चिंतन करने मात्र से वह वस्तु उपस्थित हो जाती थी। वह पत्नी, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी इच्छा करे कि आज रोटी और सब्जी खानी है तो उपस्थित, बनारसी साड़ी आ जाती थी, जो भी इच्छा करे। और एक एक पत्नी के 10-10 पुत्र और एक एक कन्या, सब के लिए अलग अलग कमरे। आप जानते हो हमारे आचार्यों ने अपनी टीका में लिखा है कि द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र थे उनको पढ़ाने के लिए एक नील शिक्षक थे, टीचर थे। द्वारका में कितने टीचर रहते थे? एक नील माने जानते हो कितना होता है? एक के पीछे जब एक जीरो लगता है तब 10 होता है, 2 जीरो लगता है तब 100, 100 के बाद 1,000, 1,000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद लाख, लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख के बाद करोड़, 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, और फिर नील। इतने एक नील द्वारका में टीचर थे, टीचर पढ़ाने वाले शिक्षक। विचार कीजिए भगवान का कितना अद्भुत ऐश्वर्य। और कृष्ण के पास सब कुछ था। वे एक बार बोलते मुझे पानी चाहिए तो 16,108 ग्लास आ जाता पीजिए। और हमारा 16,108 बार बोलेंगे तब एक बार आ जाए तो भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानना। ऐसे ऐश्वर्य में, ऐसी सुखमय स्थिति में कृष्ण रहते थे, लेकिन फिर भी रात दिन रोया करते थे, रात दिन। बलि जाऊं सदा इस नयनन पे, बलिहारी छटा पर होता रहूं, कभी भूले न याद तुम्हारी राधे, दिन रात यूं ही मैं रोता रहूं, श्री राधे ही राधे पुकारा कहूं, आंसू से मुख को धोता रहूं, ब्रज रानी तुम्हारे वियोग में, दिन रात यूं ही मैं रोता रहूं, दिन रात यूं ही मैं रोता रहूं। कमी क्या थी? 16,108 पत्नी थी, परंतु कृष्ण जिससे प्रेम करते थे वह राधा कृष्ण के पास नहीं थे। राधा के और गोपियों के विरह में कृष्ण रोया करते थे, इतना प्रेम करती थी ये गोपियां, ये ब्रजवासी कृष्ण को। लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं चलता था कि ये कैसा प्रेम है। तब एक दिन दुनिया को दिखाने के लिए कृष्ण ने एक नाटक किया, एक ड्रामा किया। कृष्ण बीमार हो गए। वैसे कृष्ण कभी बीमार नहीं होते हैं, परंतु एक दिन वो बीमार हो गए और बहुत दवाई हुई, वेद आए, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो होता है ना, जब कोई बीमार होता है तो हम उसकी खबर लेने जाते हैं। तो नारद मुनि कृष्ण की खबर लेने आए, बोले प्रभु आप बीमार हो, जगत का क्या होगा। बोले नारद मैं बीमार तो हूं परंतु मैं चुटकी में ठीक हो सकता हूं। बोले प्रभु आप अपनी बीमारी का इलाज जानते हो तो करते क्यों नहीं हो? बोले मैं नहीं कर सकता हूं, आप कर सकते हो। बोले क्या? बोले मैं तुरंत ठीक हो सकता हूं यदि कोई मेरा भक्त अपने चरण की रज मेरे मस्तक पर लगा दे, मैं तुरंत ठीक हो जाऊंगा। नारद जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, 16108 भक्त तो आपके घर पर ही है। सबसे पहले रुक्मणी जी के पास गए नारद जी, कहा कि देखो आपके पतिदेव तुरंत ठीक हो सकते हैं, बस आपके चरण की थोड़ी सी रस दे तो उनके मस्तक पर लगा दे। रुक्मणी ने कहा पागल हो गए हो, मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति की रज उस प्रभु के ऊपर, क्या मुझे नरक में जाना है? जाओ जाओ चलो यहां से। जामवंती के पास गए, सत्य मामा के पास, एक एक करके सब के पास गए, लेकिन सब ने ना चाहा। नारद मुनि निराश होकर आए कृष्ण के पास। कृष्ण ने कहा क्या हुआ नारद जी? 16108 मेडिकल थी, एक भी मेडिकल में नहीं मिला दवाई? ऐसा ही हुआ? बोले नहीं प्रभु। तब नारद जी ने कहा एक काम करो, आप ब्रज में जरा जाकर देखो, शायद ब्रज में से ब्रज मिल जाए। नारद मुनि उस समय वृंदावन में गए, गोपिया नारद जी को देखकर प्रसन्न हुई और नारद जी ने कहा कि मैं अभी अभी द्वारका से आ रहा हूं। गोपियों ने कहा बताइए हमारे कृष्ण क्या कर रहे हैं? नारद जी ने कहा वैसे तो सब ठीक है परंतु आपके कृष्ण बीमार है। बोले बीमार है तो उसका इलाज नहीं करवाया? नारद जी ने कहा इसलिए तो यहां आया हूं, कृष्ण तुरंत चुटकी में ठीक हो सकते हैं परंतु उनके किसी भक्त के चरण की रज उनके मस्तक पर लगानी। गोपियों ने कहा आखिर हम किस काम की हैं? नारद जी हम आपको रज दे रही हैं। नारद जी ने कहा देखो देखो यदि आप समझ कर देना, यदि आप अपने चरण की रज दोगी और कृष्ण के मस्तक पर लगेगी तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। गोपियां नाचने लगी और नाचते नाचते चरण की रज थैला भर भर के देने लगी। नारद जी ने कहा नरक में जाने का भय नहीं है? गोपियों ने कहा कि एक नहीं करोड़ों बार नरक में जाने के लिए तैयार हैं परंतु कृष्ण को हम दुखी नहीं देख सकती हैं, कृष्ण तुरंत ठीक होने चाहिए। ये है ब्रजवासियों की भक्ति, ये है गोपियों की भक्ति। ऐसी ही भक्ति और कृष्ण के प्रति प्रेम होने के कारण ये सब ब्रजवासी गण मथुरा आकर बैठे थे और सोचा कि बस अब कृष्ण के साथ जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि बिना ब्रजवासियों की कृपा से ब्रज भक्ति नहीं मिल सकती। देखिए हम सबको ऐसी भक्ति करनी है, ब्रज भक्ति। अभी तो हम सब लोग साधन भक्ति में है, आया राम गया राम, कभी आए कभी गए, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, साधन भक्ति। लेकिन साधन करते करते रागानुगा भक्ति और फिर इस भक्ति को बढ़ाना है तो ऐसी भक्ति को बढ़ाने के लिए ब्रजवासियों के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रार्थना होनी चाहिए, प्रणाम होना चाहिए। हमारी परंपरा में एक बहुत सुंदर भक्त हुए जिसका नाम था देवकी नंदन दास, उन्होंने बहुत सुंदर भजन लिखा है। वृंदावन वासियों को, ब्रजवासियों को प्रार्थना करते हैं। वृंदावन वासी जत वैष्णवे रगाना प्रथमे वंदना करी सभार चरणा। वृंदावन में जो भक्त हैं, वृंदावन वासियों के चरणों में प्रणाम करके ही हमें हमारे दिन का प्रारंभ करना चाहिए। सबसे पहले प्रथम इस ब्रजवासियों के चरणों में प्रणाम करना है। इसलिए कहते हैं
वृंदावन वासी जत वैष्णवे रगाना प्रथमे वंदना करी सवार चरणा। वृंदावन
હૈયા છે ન હઈ બેના પ્રભુ રજત દાસ સવાર ચરણ બંદો દંતે કરી ઘાસ અહિયા છે ન હઈ બેના नंदा जी कहते हैं इस संसार में जितने भी भक्त हैं ये सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। यहां तक कि जो भक्त हो चुके हैं उनको तो प्रणाम करना ही है, हैया छेन हई बेन। और जो भक्त अभी नहीं है परंतु होने वाले हैं, भविष्य में जो भक्त बनेंगे उसे भी प्रणाम करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जो लोग भक्ति नहीं करते हैं उसकी निंदा करते हैं कि ये माला नहीं जपता है, कथा नहीं सुनता है। परंतु यदि वह आगे चलकर भविष्य में भक्ति करने लगा तो हमने जो उनके प्रति जो व्यवहार किया था वह अपराध हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी के प्रति दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह भक्त में बहुत प्रभाव है। क्या प्रभाव है? कहते हैं
ब्रह्मांड तारी ते शक्ति धरे जाने जाने ए वेद पुराणे गुण गाय जे बसुने
ब्रह्मांड तारित शक्ति। ब्रज भक्ति करने वाले जो भक्त हैं, वे एक भक्त में पूरे ब्रह्मांड को तारने की शक्ति है। भक्त को कभी कम नहीं समझना चाहिए। कभी कभी लगता है ये धोती कुर्ता वाले क्या कर सकते हैं, परंतु ये धोती कुर्ता वाले ही कुछ करके दिखाते हैं। ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने, प्रत्येक भक्त में पूरे ब्रह्मांड को तारने की शक्ति है। इसलिए सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, यह हमारा परम कर्तव्य है।
वृंदावन वासी जत वैष्णवे रगाना प्रथमे वंदना करी सवार चरण
वृंदावन वासी जत वैष्णवे रगन प्रथमे वंदना करे सवार चरण।
तो इस प्रकार मथुरा में सब ब्रजवासी कृष्ण के प्रेम में प्रागल होकर आए थे, कृष्ण की राह देख रहे थे। अब मन में स्वाभाविक प्रश्न हो सकता है कि ये ब्रजवासी कृष्ण की राह देख रहे थे और कृष्ण के साथ जाना चाहते थे, तो कृष्ण ने अक्रूर जी का क्या किया? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं
तान समेत्याह भगवान अक्रूरं जगदीश्वर ग्रहीत्वा पाणिना पाणि प्रश्रितं प्रहसन्निव।
भगवान ने जब देखा कि ये ब्रजवासी लोग आए हैं और कृष्ण की भी इच्छा थी कि मैं ब्रजवासियों के साथ रहूं, इसलिए कृष्ण ने बहुत विनम्र होकर प्रश्रितम ग्रहित्वा पाणी ना पाणी, भगवान कृष्ण ने वह रथ को खड़ा रखा और अकुर जी के पानी का अर्थ होता है हाथ। अकुर जी के दोनों हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया और वह जगदीश्वर इस जगत के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी के हाथ को पकड़कर अक्रूर जी से कहने लगे कि हे चाचा जी, भवान प्रईश तामग्रे सह यान पुरीम गृहम। चाचा जी, आप पुरीम गृहम, आप मुझे छोड़कर मथुरा नगरी में चले जाइए और फिर अपने घर चले जाइए। वयम तून व मुच्य अथ तत् द्रक्षा महेपुरी। चाचा जी, मैं आपके साथ मथुरा में नहीं आऊंगा, मैं ब्रजवासियों के साथ मथुरा को देखना चाहता हूं। आप चले जाइए, मैं मथुरा को देखकर आराम से आपके पीछे पीछे आऊंगा। यह सुनकर अक्रूर जी को बहुत दुख हुआ। अक्रूर जी कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण, नाहम भवत्व्याम रहितम, तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। प्रवेक्षे मथुराम प्रभो, हे प्रभो, आपको मैं कभी नहीं छोड़ सकता हूं, मैं आपको छोड़कर मथुरा में प्रवेश नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पर कहीं भी खतरा हो सकता है। अक्रूर जी ने ना कह दिया। अक्रूर जी की भक्ति भी कुछ अद्भुत है। एक ओर कृष्ण को प्रभु कह रहे हैं और दूसरी ओर कह रहे हैं कि आपको मैं छोड़कर जा नहीं सकता। प्रभु का अर्थ आप जानते हैं, प्राय इस्कॉन में पुरुष भक्तों को प्रभु कहा जाता है। तो कुछ लोग पूछते हैं कि ये प्रभु प्रभु क्यों करते हो आप। प्रभु का अर्थ शास्त्र में दिया गया है। प्रभु उसे कहते हैं कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम इति समर्थ। जो इस संसार में जो संभव वस्तु हो, पॉसिबल वस्तु हो, उसे भी करे और इम्पॉसिबल वस्तु, असंभव वस्तु को भी करके दिखाए, उसे प्रभु कहा जाता है। जैसे कृष्ण ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो बिल्कुल नामुमकिन है, जैसे अपने एक उंगली पर गोवर्धन 7 दिन तक धारण करना, 6 दिन में पुतना को मारना, अगासुर बकासुर को मारना। इसलिए कृष्ण को प्रभु कहा जाता है, नामुमकिन कार्य को भी मुमकिन कर देते हैं। तो कुछ लोग कह सकते हैं ठीक है, कृष्ण को प्रभु कहा जाएगा, लेकिन ये धोती कुर्ता वाले को प्रभु क्यों कहते हैं? ये तो न जाने क्या ऐसा बड़ा कार्य कर देते हैं जो नामुमकिन भी मुमकिन हो गया। इस संसार में जो भजन करते हैं, वास्तव में शास्त्र में कहा गया है भक्ति जो है नामुमकिन वस्तु है। रूप गोस्वामी भक्तिसामृत सिंधु में भक्ति के 5 लक्षण बताते हैं, उनमें से एक है भक्ति सुदुर्लभा। क्लेशाग्नि शुभदा सांदरन विशेषात्मा कृष्ण सर्वाकर्षणी, और एक भक्ति का लक्षण है सुदुर्लभ। भक्ति दुर्लभ ही नहीं, सुदुर्लभ है, सबको नहीं मिलती है। रूप गोस्वामी को उपदेश देते हुए दशाश्वमेध घाट के ऊपर चैतन्य महाप्रभु रूप शिक्षा में कहते हैं, यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लक्षते जीव कर ये भ्रमण। हे रूप, इस ब्रह्मांड में करोड़ों करोड़ों अरबों जीव रहते हैं, और ये सभी जीव का यदि वर्गीकरण किया जाए, डिस्टिंग्विश किया जाए, तो इस ब्रह्मांड में 84 लाख प्रकार के जीव हैं। जलजा 9 लक्षाणी, 9 लाख प्रकार के जल में, स्थावरा लक्ष विशंति 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, क्रिमिया रुद्र संख्या का 11 लाख प्रकार के नदी नाली में रहने वाले छोटे मोटे कीड़े, पक्षिणाम 10 लक्षाणाम 10 लाख प्रकार के उड़ने वाले पक्षी, 30 लक्षाणी पशव 30 लाख प्रकार के 4 पांव पर चलने वाले पशु, और 4 लक्षाणी मानुष 4 लाख प्रकार के मनुष्य, 84 लाख प्रकार के जीव। 84 लाख तो प्रकार है, एक एक प्रकार में करोड़ों जीव है। जैसे एक गाय है, 84 लाख में एक प्रकार है गाय, तो ऐसी करोड़ों गाय हैं, कुत्ता, करोड़ों कुत्ते हैं। तो इस प्रकार 84 लाख प्रकार के जीव इस ब्रह्मांड में रहते हैं, परंतु इस ब्रह्मांड में रहने वाले अनंत अनंत जीवों में ब्रह्मांड भ्रमिते भ्रमिते कौन, कोई एक व्यक्ति भाग्यवान होता है, और ऐसे भाग्यवान व्यक्ति को गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। करोड़ों करोड़ों में से किसी एक को भक्ति मिलती है, विचार कीजिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। गीता में भी इसी बात को कृष्ण कहते हैं 7वें अध्याय में, मनुष्याणाम सहस्त्रेशु, हे अर्जुन सहस्त्रेशु मनुष्येशु, मनुष्यों में भी सहस्त्र करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में कश्चिन माम वेति तत्वतः, कोई एक मुझे जानने का प्रयास करता है, और मुझे जानने का प्रयास करने वालों में से यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चिन माम वेति तत्वतः, और उस हजारों हजारों भक्तों में से कोई एक मेरी भक्ति कर सकता है। कितनी दुर्लभ है भक्ति, विचार कीजिए भक्तों हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कृष्ण की भक्ति करने के लिए कृष्ण ने हमें चुना है, नहीं तो संसार में करोड़ों लोग रहते हैं, परंतु हम ऐसे हैं कि भगवान की इतनी कृपा हम पर हुई है तो इस कृपा को हम समझते नहीं है, और दिन महीने साल सब पानी की तरह जा रहे हैं, भौतिक भोग भोगते। देखिए अवसर जीवन में एक ही बार आता है, और यह अवसर यदि हम छोड़ दिए तो ऐसा अवसर फिर कभी नहीं आएगा, फिर कभी ऐसे प्रभुपाद जी शायद न नहीं आएंगे, फिर नहीं तो शायद ऐसी संस्था आएगी, और न तो फिर चैतन्य महाप्रभु की ऐसी कृपा होगी। सुवर्ण युग चल रहा है, इस कृपा को ले लेना चाहिए। मैं तो ये कह रहा था भक्ति जो है सुदुर्लभ है, सब लोग नहीं कर सकते, परंतु भक्त लोग भक्ति करते हैं, इसलिए भक्त को भी प्रभु कहा जाता है, प्रभु जी। यहां प्रक्रूर जी कहते हैं कि प्रभु मैं आपके रहित होकर मथुरा में प्रवेश नहीं करूंगा, त्यक्तुम न अरहसी, मैं तुमको त्याग नहीं सकता हूं, माम नाथ भक्तम ते भक्तवत्सल, हे भक्तवत्सल, हे नाथ आप मुझे त्याग दोगे, आप मुझे छोड़कर कहीं और चले जाओगे, मैं आपका हूं। अक्रूर जी कह रहे हैं इस श्लोक में कृष्ण को तीन चीज कह रहे हैं, प्रभु भक्तवत्सल और नाथ। वास्तव में कृष्ण प्रभु भी हैं, भक्तवत्सल, वत्सल का अर्थ होता है गाय का जो ताजा बछड़ा होता है उसे वत्सल कहा जाता है, जिसे गाय अपने ताजे बछड़े से प्रेम करती है वैसे भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त से प्रेम करते हैं। आपने कभी देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप आइएगा, यहाँ गाय है, जब गाय अपने बछड़े को जन्म देती है तो उस बछड़े के ऊपर रज वीर्य लगा होता है, कुछ गंदगी होती है, यदि हम शुभ भावना से भी उस बछड़े के पास जाते हैं उसे साफ करने के लिए तो गाय लात मार के हमको भगा देगी, किसी भी व्यक्ति को उसके पास जाने नहीं देगी, वे रक्षा करती हैं, अपने बछड़े की रक्षा करती हैं, बछड़े के लिए दूध देती, वास्तव में ये गाय दूध देती है बछड़े के लिए, हम क्या करते हैं बछड़े को लेकर जाते हैं और गाय बिचारी अपने बछड़े को देखकर जो अपने हृदय में दूध होता है वह थन में छोड़ देती है, और बछड़ा उसे थोड़ा सा पी लेता है, बछड़े को हटा देते हैं, दूध हम ले लेते हैं, और कहते हैं हम गाय के भक्त हैं, क्या खाक गाय के भक्त हैं। बछड़े को पीने देना चाहिए जब तक पिए, और फिर यदि बच जाए तो उसे, तो जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करते हैं वैसे कृष्ण अपने भक्त से प्रेम, और कृष्ण को नाथ कह रहे हैं। नाथ का अर्थ जानते हैं, ये नाथ शब्द नथ शब्द से बना है, स्त्रियां नाक में नथनी पहनती हैं, नथनी, और पशु लोग के भी नाक में डाला जाता है रस्सी, और उसमें जो बिगड़ेल पशु होती हैं उसे तो तुरंत रस्सी डालकर, होते ना बैलगाड़ी चलाने वाले, उस बैल के नाक में रस्सी डालकर वहां बैलगाड़ी के ऊपर बैठते हैं, जब खड़ा करना होता है तो जोर से खींच लेते, उसे दर्द होता है, खड़े रह जाते हैं। वैसे भगवान इस संसार में रहने वाले सभी लोगों के नाक में रस्सी बांधकर अपने धाम में बैठे हैं। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, इस संसार में ईश्वर स्वामी एकमात्र कृष्ण है और जितने भी हैं सब उनके नौकर हैं, सेवक, बैल के समान। जाहे देखे नाचाई ते तैछे करे नृत्य, वे जैसे सबको नचाना चाहे वैसे यहाँ के लोग नाचते हैं। तब आप कह सकते हो कि बैल के नाक में रस्सी तो दिखती है, यहाँ तो रस्सी तो नहीं दिख रही है। वे रस्सी क्या है? भगवान की जो रस्सी है ना, सूक्ष्म रस्सी भगवान ने छोड़ी है ऊपर से। ये बैल वाली रस्सी तो दिखाई देती है, परंतु भगवान की रस्सी उससे भी मजबूत है और दिखाई नहीं देती है, और वह रस्सी है माया रूपी रस्सी। भगवान ने माया और ममता से सबको बांध कर रखा है। कैसे? यमराज जी कहते हैं, ओतम पोतम पत वधत विश्वम, इस विश्व में रहने वाले लोगों को कैसे बांध कर रखा है, जैसे ओतम प्रोतम। ये सोलापुर वाले बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। आप लोग ये शॉल बनाते हो ना, चादर बनाते हो, रुमाल बनाते हो, तो उसमें क्या धागे होते हैं, उसमें वो धागे को चिपकाने के लिए फेविकोल नहीं होता है, होता है? वो धागे ऐसे 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 करके एक दूसरे में से ऐसे डाल देते हैं कि फिर वो छूटता नहीं है। जैसे कपड़े में वो क्या है, धागा है और कुछ नहीं है, लेकिन वीवर उसको गुनने वाले ऐसे गुन देते हैं ताकि वो ऐसे एक दूसरे में फंस जाते हैं कि कोई हिल नहीं सकता है। वैसे भगवान ने अपनी माया और ममता से संसार के लोग को ऐसे फंसा कर रखा है, निकलना चाहे फिर भी निकल नहीं सकते। पता है ना, कुछ स्त्रियां कहती हैं कि मैं जहर पीकर मर जाती लेकिन बच्चे का मुंह देख रही हूं। देखिए कैसा फंसा कर रखा है। पुरुष भी कहते हैं कि मैं अभी घर छोड़कर चला जाता लेकिन क्या करूं, बच्चा है, दया आ रही है, सब एक दूसरे में फंसे हैं। व्यक्ति सुबह सुबह घर से निकल जाता है काम धंधा करने के लिए और दिन भर मेहनत करता है, और रात को जब ऑफिस बंद करता है तो सोचता है वो घर पे जाने पर झंझट शुरू हो जाएगी। उसे पता है कि घर पे जाने से दुख मिलेगा, वहां डिमांड के ढेर लग गए होंगे, ये लाए वो लाए, ये करो वह करो, बाजू वाले ने साड़ी ली मुझे भी ली। ये एक स्वभाव है, मेरे पास साड़ी नहीं है इसलिए दुखी नहीं हूं, बाजू वाले के पास है इसलिए दुखी। एक स्वभाव बन गया है, दूसरों का देख नहीं सकते। ये हमारा अनुभव है सबका। बाजू वाले ने तो नया फ्रिज लिया, इतना बड़ा फ्रिज है और हमारे घर पर छोटा फ्रिज है। अरे भाग्यवान आएगा, अभी से पुराना तो होने दो, ये बेचारे समझाते हैं, लेकिन बस दूसरों का देख नहीं सकते हैं, कॉम्पिटिशन। एक बार शिवजी एक भक्त के ऊपर प्रसन्न हो गए। शिवजी के भक्त होते ना, भोलेनाथ के भक्त, भोलेनाथ के ऊपर प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए? भोलेनाथ ने कहा, आप जो भी मांगो उसका दुगुना आपके पड़ोसी को मिलेगा, सोच समझ कर मांगना। उसने कहा ये तो गड़बड़ हो गई, अब एक गाड़ी मांगूंगा तो बाजू वाला दो गाड़ी वाला हो जाएगा, एक लाख मांगूंगा तो पड़ोसी वाला दो लाख वाला हो जाएगा। मेहनत किया मैंने और खाए वो, क्या करूं क्या करूं। मनुष्य बहुत बुद्धिमान है। शिव जी को कहा, शिव जी एक काम कीजिए, मेरी एक आंख फोड़ दो। बाजू वाले की दो फूटेगी, मेरी एक आंख फोड़ दो और मेरे घर पर एक कुआं बना दो बिना बाउंड्री का। बाजू वाले के घर पर दो कुआं बनेगा जिसमें बाउंड्री नहीं होगी और दोनों आंख फूटी हुई होगी और कुएं में जाकर मर जाए साला। देखिए अपना कुछ नहीं सोचा, लेकिन बाजू वाले को कुछ नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग का ये स्वभाव हो जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये पुरुष देखता है कि यहां से घर से जाऊंगा तो वहां दुख मिलने वाले हैं, तो इसका फोन जाता है स्त्री का, पत्नी का, देखिए आज देरी मत करना, जल्दी आ जाना है। वहां घर पे बैठी बैठी रस्सी फेंकती है ऐसे, और फिर खींच लेती है। वो देखता है, उसे पता है, जानता है कि घर पे जाकर दुख मिलेगा, लेकिन वो रस्सी इतनी मजबूत है कि वो धीरे धीरे करके वो खींच कर उसी घर में वापस आता है जहां पर दुख मिलने वाला है। बताइए ये भगवान की रस्सी नहीं है तो क्या है, ये बंधन नहीं तो क्या है? और उसमें भी जो स्त्री में आसक्त हो गया वो तो फिर बंदर की तरह नाचने लगेगा। इस संसार में जो लोग पत्नी की आसक्ति में फंस गए और गए काम से, ये पत्नी की आसक्ति कैसी जानते, केवल पत्नी के लिए, पत्नी को पति में ये आसक्ति बुरी चीज है। देखिए मेरे प्रवचन का गलत असर न हो जाए, ध्यान रखो पत्नी कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन उसमें जो गलत आसक्ति है ये बुरी चीज है। दकल सोचेंगे चलो बस अब छोड़ देना है, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। लोग पत्नी में आसक्त हो जाते हैं और फिर गोस्वामी जी कहते हैं ना कि बंदर की तरह। एक संत वृंदावन में कथा सुना रहे थे, बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। आपने कभी बंदर पकड़ने वाले को देखा है? नहीं देखा है? चलो सिखा देता हूं आपको। अब सीखना क्या, हम लोग उसी कोटि के तो है। बंदर पकड़ने वाला जो मदारी होता है, वो बंदर को पकड़ने के लिए एक पॉट, क्या कहते हैं हिंदी में, गमला, सुराही गमला जो भी है, तो कांच का गमला बनाता है ट्रांसपेरेंट, और उस गमले का जो मुंह होता है बहुत पतला होता है और नीचे से बड़ा होता है, नीचे से बड़ा और ऊपर से पतला, और कांच का होता है और अंदर चना डाल देता है। बंदर चना खाने में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा लगता है। उस कांच के गमले में चना भरकर वो बीच रास्ते में मदारी रख देता है, और बंदर दूर से आता है उस चने के लोभ में, और आकर उस चना खाने के लिए बंदर उसमें हाथ डालता है, परंतु उसका मुंह जो होता है पतला होता है, वैसे हाथ डालकर वो चने को पकड़ता है, फिर निकालने की कोशिश करता है तो निकलता नहीं है। चना छोड़ दे तो हाथ निकल सकता है, लेकिन उसको चना चाहिए, तो चना को पकड़कर वैसे वो प्रैक्टिस में, वो मेहनत में लगा है, उतने में वो शिकारी आता है धीरे धीरे, और वो मेहनत में लगा है। बंदर ऐसे देखता भी है कि वो आ रहा है, लेकिन चने में इतना आसक्त है उसे छोड़ना नहीं चाहता है। उसे पता है कि यदि चने को छोड़ दूं तो मैं छूट सकता हूं, परंतु वो बंदर चने के लोभ में निकालने की कोशिश करता है, उतने में मदारी आ जाता है, उस बंदर को पकड़ लेता है। जैसे नारी किसी पुरुष को पकड़ लेती है, गोस्वामी कहते हैं नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई,
नारी विवश नर सकल गोसाई,
नारी विवश नर सकल गोसाई,
नारी विवश नर सकल गोसाई।
नारी के विवश में होकर क्या होता है? नारी विवश नर सकल गोसाई,
नारी विवश नर सकल गोसाई,
नाचे नर मर कट थी नाई,
नाचे नर मर कट थी नाई,
नाचे नर मर कत की नाई
भगवान श्री कृष्ण सबके नाथ हैं और अपनी माया ममता की रस्सी से सबको बांध कर रखे हैं। हे प्रभु, हे नाथ, हे भक्त वत्सल, मैं आपको छोड़कर मथुरा नहीं जाऊंगा, आप मेरे साथ चलिए। कृष्ण ने कहा कि मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, मैं ब्रजवासियों के साथ जाना चाहता हूं। तब अक्रूर जी के मन में हुआ कि ये गोकुल से तो मेरे साथ चले हैं मथुरा आने के लिए, अब यहां पहुंचकर ये हमारे घर पर आने के लिए ना क्यों कह रहे हैं। अक्रूर जी के मन में हुआ निश्चित, मैं केवल कृष्ण को अपने घर पर बुला रहा हूं इसलिए कृष्ण ना कह रहे हैं। यदि कृष्ण के साथ कृष्ण के भक्तों को बुलाऊंगा तो कृष्ण अवश्य आएंगे। बात भी सत्य है। एक बार रामायण में हनुमान जी महाराज जब सीता का अन्वेषण करने के लिए लंका गए तो वहां विभीषण से मिले। हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी कहो आपकी रहनी कैसी है। विभीषण जी ने कहा, जैसे 32 दांत के बीच में जीवा रहती है ऐसे मेरी स्थिति है। असुर कुल में मेरा जन्म हुआ है, असुरों के बीच में रहता हूं, मुझे नहीं लगता है कि भगवान मुझे मिलेंगे। परंतु हनुमान जी महाराज, आज आप मेरे घर पर पधारे हो, आप मेरे घर पर आए हो, अब मोहि बा भरस हनुमंता। हे हनुमंत, हनुमान जी महाराज, आज तक मुझे ऐसा था कि भगवान मेरे घर पर कभी नहीं आएंगे, परंतु आप भगवान के भक्त मेरे घर पर आ गए हो तो निश्चित भगवान मेरे घर पर आएंगे, क्योंकि जिनके घर पर वैष्णव जाते हैं उनके घर पर विष्णु निश्चित जाते हैं। यदि विष्णु को अपने घर पर बुलाना चाहते हो वैष्णव को बुलाइए। जिस घर पर वैष्णव का आगमन नहीं है उस घर पर विष्णु नहीं आते हैं। बिन हरि कृपा मिलत नहीं संता। हरि की कृपा के बिना संतों का आगमन नहीं और संतों के आगमन के बिना भगवान का आगमन नहीं। तो अक्रूर जी को मन में लगा कि मैं मात्र भगवान को ही फोर्स कर रहा हूं मेरे घर पर आइए, भक्तों को नहीं बुला रहा हूं, इसलिए शायद कृष्ण ना कह रहे होंगे। तब अक्रूर जी कहते हैं, आगच्छ हे अधोक्षज, आप मेरे घर पर चलिए, और आप ही नहीं सनातन कुर्वद अधोक्षज सह अग्रज, आप अपने अग्रज बड़े भाई बलदेव जी के साथ भी आइए, और अपने साथ साथ गोपाले सहज बीच सुहत्तम, और अपने साथ जितने भी ब्रजवासी हैं, गायों का पालन करने वाले, आपके जितने भी सखा, जितने भी भक्त हैं, ये सब हमारे साथ चलिए। मानो कृष्ण कहे, आपके घर पर तो बहुत लोग आते होंगे, बहुत सारे अतिथि आपके घर पर आते होंगे, मानो हम नहीं भी आए तो क्या फर्क पड़ता है। तब अक्रूर जी कहते हैं, प्रभु बहुत फर्क पड़ता है, प्रभु आपके चरण इतने दिव्य हैं। पुनि पाद रजसा गृहान्नो गृह मेधिनाम। हे प्रभु, मैं गृहस्थ हूं, और मैं गृहस्थ नहीं, मैं गृह मेधी हूं। ये अक्रूर जी अपने लिए नहीं, हम सब के लिए कह रहे हैं। इस संसार में जितने भी गृहस्थ है, गृहस्थ का अर्थ होता है गृह मेधी, मेधी का अर्थ होता है, श्रीपाद श्रील स्वामी कहते हैं, मेधती इति हिंसायाम। मेध का अर्थ होता है हिंसा। हम लोग गृह में रहकर हिंसा के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। जितने भी गृहस्थ है सब लोग पापी हैं, सब लोग हिंसा करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र में लिखा है, अक्रूर जी इस बात को कह रहे हैं। क्योंकि गृहस्थ का जीवन ही कुछ ऐसा होता है जिनमें मजबूरन होकर उस गृहस्थ को पाप करना पड़ता है। गृहस्थ में चाहे पति हो या पत्नी हो, सुबह उठकर आप गर्म पानी से स्नान करते हो ना, वह गर्म पानी जब नाली में जाता है तो उस नाली में कुछ ऐसे जीव जंतु कीड़े होते हैं जो गर्म पानी का स्पर्श करते ही मर जाते हैं। सुबह उठते ही हम शुभ मुहूर्त करते हैं पाप का, क्या हम पाप नहीं कर रहे हैं? इसी के साथ माताएं झाड़ू लगाती हैं, उस झाड़ू लगाने में कितने चींटी मकोड़े मर जाते हैं, क्या ये पाप नहीं है? इसी के साथ साथ माताएं भोजन बनाती हैं अपने लिए और पति के लिए, उस अग्नि के बिना भोजन नहीं बन सकता है, और जब अग्नि जलती है तो कई सारे ऐसे जीव जंतु हैं उस अग्नि में, जैसे फतिंगा होता है ना, अग्नि में प्रवेश करके मर जाता है, मर जाते हैं। आप देखते हो ना, ये फोकस है ना, इसके ऊपर कई सारे जीव जंतु आते हैं, बैठते हैं, मर जाते हैं, थोड़ा सा ताप लगता है तो मर जाते हैं। क्या हम पाप नहीं कर रहे हैं? मसाला पीसने में कुछ लोग कहते हैं कि हम तो कुछ पाप नहीं करते। अरे आप काम धंधा करने के लिए घर से फैक्ट्री में या ऑफिस तो जाते हो, यदि चलकर जाते हो तो आपके पांव के नीचे कितने कीड़े मर रहे हैं, यदि कार से जा रहे हो तो टायर के नीचे कितने मर रहे हैं, यदि ऑटो और बस से जा रहे हो तो उनके टायर के नीचे कितने मर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप सांस लेते हो ना, इस सांस में भी कई सारे जीव जंतु जाते हैं और मर जाते हैं। तो बताइए, क्या गृहस्थ पाप नहीं करते हैं? हम सब लोग, ये तो ऐसे पाप है जो न चाहते हुए हो रहे हैं, और कुछ पाप तो रच रच कर कर रहे हैं, ये तो हो ही रहा है, और कुछ लोग तो पैसे दे देकर पाप करते हैं, भाई चलो एक बंडल सिगरेट दे दो पाप शुरू, गुटखा खाकर पाप करते हैं, मांस खाकर पाप करते हैं, मदिरा पीकर पाप करते हैं। गृह में जी हम लोग गृहस्थ हैं, और गृहस्थ में रहने वाले को पाप करना पड़ता है, परंतु प्रभु पुनी ही पाद रजसाम गृहान न गृह मेदीसाम, परंतु आपके चरण यदि हमारे घर पर आएंगे तो हमारी गृहस्थी पवित्र हो जाएगी। पर प्रभु आपके चरण इतने पवित्र है, अक्रूर जी कह रहे हैं कि हे कृष्ण आप हमारे घर पर आएंगे, हमारी गृहस्थी को पवित्र कीजिए, हमें पाप से मुक्त कीजिए। भगवान के चरणों में यह कमाल है। रामायण के प्रसंग में भगवान रामचंद्र, लखनलाल और विश्वामित्र जी जा रहे थे जनकपुर की ओर। आश्रम एक दीख मग माही, खग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा कही विशेष। एक पत्थर पड़ा था और भगवान श्री रामचंद्र ने अपना चरण उस पत्थर के ऊपर स्पर्श कर दिया, वो पत्थर नारी बन गई। गौतम ऋषि के द्वारा श्राप था और श्राप के कारण बिचारी पत्थर बन गई थी, परंतु भगवान का चरण स्पर्श होते ही सभी पापों से मुक्त होकर वे परम देवी के समान हो गए। ये है भगवान के चरण की महिमा। प्रभु आप हमारे घर पर आइए, आप अपने चरण हमारे घर पर पधारिए, रखिए, ताकि हमारी गृहस्थी पवित्र हो जाए। यश शोचेन अनुतृप्यंती, प्रभु आपका चरण का धोवन जो है, आपके चरण का धोवन करने से इस संसार में अग्नि सहित सभी देवता तृप्त हो जाते हैं। पितर स अग्नय सुरा, सत्य बात है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण के भक्त से अग्नि प्रसन्न रहती है, अग्नि भी, सभी देवता अग्नि कृष्ण भक्त से प्रसन्न। आपने हरिदास ठाकुर का नाम सुना होगा। हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में जन्म लिए थे, परंतु कृष्ण के भक्त थे। भक्तों हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे मुसलमान भक्त हो गए, ऐसे ऐसे मुसलमान कृष्ण के भक्त हो गए जिसे एक मुसलमान के ऊपर हजारों हिंदू कुर्बान है। एक से एक बेजू बाबरा, रस खान और हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में, परंतु अपने मजहब को छोड़कर, कलमा छोड़कर, नमाज और कुरान को छोड़कर भगवद गीता और कृष्ण भक्ति को अपनाए। एक दिन हरिदास ठाकुर विचरण करते करते शांतिपुर नाम के गांव में गए, जहां पर अद्वैत आचार्य रहते थे। वहां शांतिपुर नाम के गांव में एक गुफा में हरिदास ठाकुर रहते थे। अद्वैत आचार्य को पता चला कि ये कृष्ण के भक्त हैं। एक दिन अद्वैत आचार्य के पिता के श्राद्ध का दिन था, और उस श्राद्ध के अवसर पर आप सब जानते हो कि ब्रह्म भोजन कराया जाता है। उस श्राद्ध के अवसर पर अद्वैत आचार्य ने उस गांव के सभी ब्राह्मणों को बुलाया और उस वैष्णव को भी बुलाया, हरिदास ठाकुर को भी बुलाया, और सभी ब्राह्मणों के बीच में पूरी लाइन में पंक्ति में ब्राह्मणों के साथ हरिदास ठाकुर को भी बिठाया। थाली परोसी, भोजन परोसना शुरू हुआ और सभी ब्राह्मणों ने देखा कि हमारे बीच में ये मुसलमान क्या कर रहा है, और उस समय ब्राह्मण क्रोधित हो गए सभी ब्राह्मण, और ब्राह्मणों ने बहिष्कार किया, क्या अद्वैत आचार्य जी आप हमारा अपमान कर रहे हैं, ये तुच्छ मुसलमान के साथ हमें बिठा रहे हैं, ये पापी है, अधम है, यदि इस मुसलमान को इस घर पर हमारे साथ भोजन कराना है तो हम भोजन नहीं करेंगे। अद्वैत आचार्य ने कहा कि मैं हरिदास को नहीं छोड़ सकता हूं। इतना सुनते ही सभी ब्राह्मण खड़े होकर चले गए। तब अद्वैत आचार्य ने कहा एक काम करो, मेरे घर पर भोजन न करो, ये कच्चा सीधा तो लेकर जाओ, कच्चा आटा। सभी ब्राह्मण कच्चा आटा लेकर अद्वैत आचार्य के घर से अपने घर चले गए, परंतु ये ब्राह्मणों ने एक वैष्णव का अपराध किया, हरिदास ठाकुर कृष्ण के भक्त का अपराध किया। ये ब्राह्मण लोग कच्चा सीधा लेकर तो अपने घर पर पहुंच गए, परंतु अग्नि वहां पर नहीं जली। पहले के जमाने में गैस और स्टव नहीं था, चूल्हा होता था, चूल्हे में अग्नि जलाई जाती और एक दिया वहां पर पड़ा रहता था जला हुआ, उसे या किसी पत्थर को घींच कर अग्नि करते। परंतु सभी ब्राह्मणों ने अपने घर घर जाकर बहुत प्रयास किया, परंतु अग्नि वहां पर जली नहीं। 24 घंटा प्रयास किया, किसी के घर पर अग्नि, एक के घर पर भी अग्नि जले तो वहां से लेकर आए और पूरे गांव में फैल जाए। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, 3 दिन का उपवास निर्जला, जल तो पिया होगा, सजला उपवास हो गया। अब तो ये बेचारे मरे जा रहे हैं और अग्नि नहीं आ रही है। तो ब्राह्मण ने सोचा लगता है हमसे किसी का अपराध हो गया है। याद किया, सोचो किसका अपराध हुआ है। सबको याद आया उस दिन अद्वैत आचार्य के घर पर गए थे, वहां पर एक मुसलमान भक्त का अपराध किया, कहा कि देखो उससे माफी मांगते हैं, नहीं तो हम इसी प्रकार भूखे मर जाएंगे और हमारे अपराध की सजा हमारे परिवार वालों को। ब्राह्मणों को तो इतना टेंशन नहीं था, लेकिन पीछे से फोर्स आ रहा था, हे तुम क्या कर रहे हो, किसका अपराध करके आ गए, घर पे भोजन नहीं पक रहा है, जाओ जल्दी अग्नि लेकर आओ। सब ब्राह्मण मिलकर हरिदास ठाकुर की गुफा में गए, पूरे शांतिपुर गांव में किसी के घर पर अग्नि नहीं, और उस समय हरिदास ठाकुर की गुफा में अग्नि जल रही थी। सभी ब्राह्मण हरिदास ठाकुर के चरणों में पड़ गए। मैं इस घटना को इसलिए कहा, हरिदास ठाकुर कृष्ण के भक्त थे और अग्नि देवता की कृपा किसी के ऊपर, यहां तक ब्राह्मणों के ऊपर भी न होकर कृष्ण के भक्त हरिदास ठाकुर के घर पर। यहां पर अक्रूर जी यही कहते हैं कि हे प्रभु, जो लोग आपकी भक्ति करते हैं, आपके चरण का चरण को धोते हैं, तो उसे अग्नि तृप्त हो जाती है, और अग्नि नहीं ससुरा सभी देवता भी तृप्त हो जाते हैं। देखिए कृष्ण की भक्ति ऐसी है जिससे सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। और कृष्ण को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की शरण में जाओगे तो किसको प्रसन्न रख पाओगे? 33 करोड़ संख्या है, है? रोज एक एक रोज एक एक देवी देवताओं की भी पूजा करोगे तब भी जीवन कम पड़ेगा और तब भी उसे प्रसन्न नहीं कर पाओगे। देवी देवताओं को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल, और प्रसन्न करने में मान लो कहीं मिस्टेक हो गई, थोड़ी भी गड़बड़ी हो गई तो गए काम से। वही देवी देवता नड़ते हैं, गांव में प्राय होता है ना, हमें पितृ नड़ते हैं, देवी देवता नड़ते हैं, बहुत नड़ते हैं। कुछ मन्नत रखते हैं और उसमें कुछ बाकी रह गया, ठीक से पूर्ण नहीं हुआ, तो फिर वही देवी देवता नड़ेंगे। परंतु कृष्ण की भक्ति में ऐसा नहीं है। यदि आप कृष्ण की भक्ति कर लेते हो तो सभी देवी देवताओं की भक्ति। भागवत में कहा है, यथा तरोमूल निषेचनेन तृपियन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। भगवान श्री कृष्ण जैसे एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष के मूल है कृष्ण, और ये देवी देवता डाली, पितृ पत्ते, और संसार के लोग फूल के समान है। यदि आपको उस वृक्ष को पानी पिलाना है तो वृक्ष के जड़ में पानी डालना होगा। आप डाली के ऊपर पानी डालो या पत्ते के ऊपर डालो या फल के ऊपर डालो, वो पानी पहुंचेगा नहीं। वैसे यदि आप देवी देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हो या पितरों को प्रसन्न करना चाहते हो तो कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। कृष्ण की भक्ति करने से सब लोग तृप्त हो जाते हैं। इसलिए अक्रूर जी कहते हैं कि हे कृष्ण, हे प्रभु, आप हमारे घर पर आइए। अक्रूर जी कृष्ण के चरणों की महिमा कह रहे हैं। अवनिज्यांग्री युगलम आसित श्रोत्यो बलिर महान ऐश्वर्यम अतुलम लेभे गतिम चैकांतिकाम तुया। प्रभु क्या बताऊं, आपके चरण को पखारने से ये असुरों के सम्राट बलि महाराज विपुल ऐश्वर्य को प्राप्त हो गए, ये संसार में अमर हो गए आपके चरण को धोकर। धन्य हो गए बलि महाराज। आप सब जानते हो इस घटना को, भगवान ने वामन अवतार धारण किया और बलि महाराज के घर पर गए। देखिए हमारे इतिहास में भगवान ने 3 लोगों के ऊपर अहेतु की कृपा की है। अहेतु की माने ये 3 लोगों ने कुछ नहीं किया, भगवान चलकर उनके पास गए। ये 3 कौन? बलि, बाली और काली। बलि महाराज और रामायण का वह बाली सुग्रीव का भाई, और द्वापर युग का वह काली नाग। बताइए काली नाग कौन सा माला जपा था या कौन सी कथा में गया था? लेकिन भगवान चलकर यमुना में गए और यमुना में जाकर काली नाग के मस्तक के ऊपर अपना चरण रख दिया। काली नाग की पत्नी प्रार्थना करती है, प्रभु वाह, आज तक तो हमने सुना था हे कृष्ण करुणा सिंधु, कृष्ण करुणा के सागर, लेकिन आज तो हमने देख लिया इस संसार में बड़े बड़े योगी योग करते रह जाते हैं परंतु आपके चरण का ध्यान नहीं कर सकते हैं। ध्यानी लोग आपके चरण को देख नहीं सकते हैं, वे साक्षात आपके चरण हमारे पति के मस्तक पर आ गए। हमारे पति ने क्या किया था? कुछ नहीं है। जब तक हम जिस दिन से हम लोग इस घर पर आई है, पत्नी विवाह होगा तब से आई है, जिस दिन से हम हमारे पति के साथ रह रही हैं तब से इसने कोई अच्छा काम नहीं किया, और इसने पूर्व जन्म में भी कुछ अच्छा काम नहीं किया होगा, क्योंकि यदि अच्छा काम किया होता तो नाग थोड़ी ना होता, हमारे जैसा कोई मनुष्य होता न, तो पूर्व जन्म में कोई अच्छा काम किया है न इस जन्म में, लेकिन फिर भी प्रभु आप आए अहेतु की कृपा। बाली के ऊपर अहेतु की कृपा, और बलि महाराज के पास भगवान वामन चलकर आए, और भगवान वामन का स्वागत बलि महाराज ने किया, और भगवान वामन ने सबसे पहले तो बलि से छल करके स्वर्ग को ले लिया, इंद्र को दे दिया। कई लोग कहते हैं कि देखिए बलि महाराज ने भगवान की भक्ति की, भगवान को दान दिया तो बलि महाराज हार गए, परंतु विचार कीजिए, तत्व से देखिए, बलि महाराज को भगवान ने जब बांध दिया तब उनके मन में एक बहुत सुंदर बात आई हम लोगों के लिए। संसार के लोगों को लगता होगा कि बलि आज सब कुछ हार गया है, संसार के लोगों को यह लगता होगा कि बलि आज सब कुछ हार गया है और इंद्र स्वर्ग जीत गया है। परंतु इतना ध्यान में रखिए, बलि स्वर्ग को हारकर कृष्ण को जीत लिया है और इंद्र कृष्ण को हारकर स्वर्ग को जीता है। बलि हारा नहीं, बलि उस दिन भी जीता था और बलि आज भी जीता है। किसको? कृष्ण को जीत लिया बलि महाराज ने कृष्ण। और कृष्ण ने वादा किया कि आने वाले युग में, आने वाले मन्वंतर में, अभी जो मन्वंतर चल रहा है, फिलहाल वर्तमान के जो इंद्र है उस इंद्र का नाम है पुरंदर, और आने वाले मन्वंतर में बलि महाराज इंद्र बनेंगे। लेकिन तब तक के लिए भगवान श्री विष्णु ने बलि महाराज को सूतल लोक का राजा बनाया। जाते जाते बलि महाराज ने कहा, प्रभु कहाँ भेज रहे हो, न तो वहां आपका भक्तों का संग होगा, न तो वहां मंदिर है, न कुछ। तो भगवान ने कहा, बलि महाराज मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं और आप सूतल लोक का राज कीजिए और मैं वहां आपका द्वारपाल बन जाऊंगा। तो बलि महाराज ने कहा, नेक काम में देरी किसकी, चलो दोनों साथ में ही चलते हैं, मैं राज करूंगा, आप द्वारपाल बनिएगा। भगवान द्वारपाल बन गए। भगवान अपने भक्तों के हाथों बीक जाते हैं। बलि महाराज ने चरण धोए और भगवान उसके द्वारपाल। और फिर जानते क्या हुआ, वहां वैकुंठ में लक्ष्मी जी राह देखती रही, ऑफिस में फोन किया, हमारे वो अब तक घर पे क्यों नहीं आए। तब किसी ने मैसेज दिया कि वो तो द्वारपाल बन गए हैं और वो तो अब 71 चतुर्युग के बाद आएंगे। बोले, तब तक मैं क्या करूंगी, क्या करूं क्या करूं। तब लक्ष्मी देवी के मन में एक विचार आया। देखिए, रक्षाबंधन कब से प्रारंभ हुआ मैं आपको बताने जा रहा हूं। लक्ष्मी देवी ने सोचा कि यदि मैं बलि महाराज को भाई बना लूं और रक्षाबंधन के दिन राखी बांध दूं तो वो तो मुझे कहेगा कि बहना क्या चाहिए, मांग लूंगा, मेरे पति को भेज दो। देखिए शास्त्र की अद्भुत घटना है। लक्ष्मी जी गई और बलि महाराज को भाई बनाया और बलि महाराज ने बहुत बहना बहना किया। और उस रक्षाबंधन के दिन बलि महाराज ने कहा, बहना तुम्हें क्या चाहिए। कहा, भैया आपने हमारे पति को द्वारपाल बनाकर रखा है, उसे छोड़ दो, हमारे साथ घर पर आने दो। बोले, ठीक है, लेकर जाओ और क्या। इस प्रकार से रक्षाबंधन। फिर रक्षाबंधन के ऊपर भी बहुत कुछ बोला जा सकता है, फिर कभी सुनेंगे। लेकिन यहां पर अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की महिमा कर रहे हैं। प्रभु आपके चरण, आपके चरण को धोकर बलि महाराज धन्य हो गए, आपके चरण को धोकर वह रामायण का केवट धन्याति धन्य हो गया। बताइए केवट के पास क्या था, न तो कोई स्कूल में गया, न कॉलेज में गया, कुछ नहीं। भगवान रामचंद्र वनवास के दरमियान वे गंगा का एक तट था, गंगा नदी को पार करना चाहते थे। बहुत दूर एक नाव खड़ी थी तो भगवान ने दूर से इशारा किया, नाव वाले, तो उस नाव में केवट बैठा था, बैठे बैठे इशारा किया। भगवान ने कहा, क्यों। बोले ये क्या। वो स्वामी सीधा सीधा लिखते हैं, मांगी नावन केवट आना, कह ही तुम्हार मरम में जाना। प्रभु ने नाव मंगाई परंतु केवट नहीं गए। तो भगवान ने कहा, क्या प्रॉब्लम है। बोले, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके शरीर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके चरण में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु आपकी चरण में जो रज लगी है ना, उसमें प्रॉब्लम है। बोले, मेरी चरण की रज में क्या तकलीफ है। बोले, हमने सुना है कि आपके चरण की रज किसी पत्थर के ऊपर पड़ी तो वो नारी बन गई। बोले, आपके चरण की रज पत्थर के ऊपर पड़ती है तो नारी बन जाती है, तो मेरी नौका लकड़ी की है, वह तो कुंवारी नारी बन जाएगी। देखो एक तो ऑलरेडी एक पत्नी से परेशान हूं, ये दूसरी हो जाएगी तो फिर कैसे संभालूंगा। इसलिए और कोई काम है तो बताओ, बाकी नौका में मैं आपको नहीं बिठाऊंगा। वहां पर दूसरा कोई नौका वाला था भी नहीं, क्या करें। भगवान ने कहा तो क्या करना है अब जो। और लक्ष्मण जी क्रोधित हो रहे थे। केवट ने कह दिया लक्ष्मण कितना भी क्रोधित हो, चाहे बाण मारकर मुझे मार डाले, परंतु नाव के ऊपर मैं आपको तो नहीं बिठाऊंगा। मर जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा, लेकिन नाव पर प्रभु आपको कभी नहीं बिठाऊंगा। तो बोले तो अब हमें नाव में बैठना है तो उसका कोई उपाय है। बोले हाँ उपाय है। बोले क्या उपाय है। आपके चरण मुझे धोने दीजिए, मैं आपके चरण को रगड़ कर धो दूंगा, मिट्टी निकाल दूंगा, फिर आपको बिठा सकता हूं। भगवान हंसते हुए कहे ठीक है केवट, धो दो चरण और क्या। गोस्वामी बहुत सुंदर कहते हैं जो भगवान अपने दो कदम से पूरे ब्रह्मांड को नाप लिए, छोटे से नदी के किनारे को नापने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। ये जरा भगवान की लीला भी अद्भुत है। ये भगवान की इच्छा है भक्तों के साथ आदान प्रदान। कहा धो दो। केवट घर पर कहा प्रभु रुकिए, दौड़कर घर पर गया और लकड़े का पात्र लेकर आया कंफर्मेशन के लिए कि ये लकड़े का पात्र स्त्री तो नहीं बनता है। लकड़े का पात्र लाया, जग लाया और भगवान को बिठाया एक पत्थर के ऊपर और बहुत रगड़ रगड़ कर धोया। और भगवान के चरण धोने के बाद खुद कहा प्रभु दो मिनट। लक्ष्मण ने कहा देखो जल्दी करो, बहुत लेट हो रहा है हमें ऐसे भी। ये केवट घर पर गया, अपनी पत्नी और चार पांच बच्चों को लेकर आया। बोले तुम भी धो। पत्नी ने धोया, पत्नी ने धो लिया, बच्चों को चिंटू मिंटू जो भी लाइन में खड़े थे सब ने धोया भगवान के चरण को, सब ने धोया। और फिर धोने के बाद सब ने उसको पिया, खुद केवट पिया, पत्नी को पिलाया, बच्चों को पिलाया, लक्ष्मण को इशारा किया। लक्ष्मण क्रोधित हो रहे थे, अरे जल्दी कर, ये सब क्या नाटक ड्रामा लगा रखा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि केवट भगवान को नदी पार कराने से पहले अपने पूरे कुल को इस भवसागर से पार करा दिया है भगवान के चरण को धोकर। भगवान का चरण धोया, उसको पिया, मस्तक पर डाला। देवता लोग पुष्प की वृष्टि करने लगे और मन में सोचने लगे हम लोग इतना सुंदर शिक्षा प्राप्त किए, ऐसी कॉलेज में पढ़े, इतने ज्ञानी, इतने सोफिस्टिकेटेड, लेकिन आज तक भगवान के चरण को देखा नहीं और ये केवट गांव का गवार चरण को धो दिया और पी लिया। धन्य है केवट, धन्य। केवट ने भगवान के चरण को धो दिया और फिर कहा कि अब प्रभु एक काम करो, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं आपको नाव पर बिठा देता हूं। लक्ष्मण कहा देखो ये बात नहीं हुई थी, बात केवल चरण धोने की हुई थी, कंधे पर बिठाने की नहीं हुई थी। कहा कोई बात नहीं, चलो फिर से मट्टी लग जाएगी तो फिर से धोना पड़ेगा। लक्ष्मण ने कहा ये साला दो तीन घंटा और बिगाड़ेगा, ठीक है चढ़ा ले अपने कंधे पर प्रभु को। केवट को अपने कंधे पर, केवट ने भगवान को अपने कंधे पर बिठाया। देखिए कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, बहुत चतुर होते हैं। बिठाया भगवान को अपने कंधे पर और फिर डायरेक्ट नदी नाव में बिठाया। लखनलाल बैठे, सीता जी बैठी और केवट उस नाव को चलाने लगा। अब सीधा सीधा नाव को लेकर जाए तो दो मिनट में उस पार पहुंच जाते, लेकिन केवट उस बीच नदी में ही चक्कर घुमाने लगा। आधा घंटा, एक घंटा, डेढ़ घंटा, लक्ष्मण की आंखें लाल और प्रभु शांत कर रहे थे। लक्ष्मण शांत हो गए, हम क्षत्रिय, क्षत्रियों के साथ युद्ध है, ये बिचारे इसके पर। लक्ष्मण बाण आधा आधा तो तर्क से निकाल ही देते थे कि अब मार दो, अब मार दो, लेकिन प्रभु उनको शांत कर रहे थे, शेष के अवतार थे। लेकिन अब भगवान से, भगवान की धीरज चली गई। दो घंटा हुआ, दो मिनट के काम में दो घंटा लगा दिया। भगवान ने कहा केवट अब जल्दी पार कराओ, अब बीच में ही चक्कर कटा रहा है। केवट ने कहा बस प्रभु बस, इतने चक्कर में थक गए, यहां 84 के चक्कर में घुमाते हो, क्या हम लोग नहीं थके हैं? प्रभु बस मैं यही समझाना चाहता हूँ, आप 2 घंटे के चक्कर में थक गए, हम लोग 84 का चक्कर काट रहे हैं, हमें भी आप पार लगा दीजिए प्रभु, पार लगा दीजिए। तो इस प्रकार से भगवान के चरण को धोकर केवट भी धन्याति धन्य हो गया। अक्रूर जी याद कर रहे हैं, राग कहते हैं, आपस्ते अंग्र ध्वनि जन्यस त्रिलोकान सुचयो पुनन शिरसा दत्त या शर्व स्वयार्ता सगर सगर आत्मजा। हे प्रभु, आपके चरण से निकला हुआ जल त्रिभुवन को पवित्र करने वाला बन गया। आप विचार कीजिए, ये जो गंगा है, गंगा में करोड़ों लोग स्नान करते हैं, अपना पूरा पाप लेकर गंगा में जाते हैं और स्नान करते हैं, पवित्र हो जाते हैं। और गंगा है क्या, जल है, साधारण जल। लेबोरेटरी में लेकर जाओ, H2O कॉम्बिनेशन आएगा, परंतु उस जल में करोड़ों लोगों को पवित्र करने की शक्ति कहां से आई? कहते हैं वह जल भगवान के चरणों से स्पर्श होकर निकला, इसलिए करोड़ों लोगों को पवित्र करने की शक्ति आ गई। ये है भगवान के चरण की महिमा। इतना ही नहीं, सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार कर दिया भगवान, उस भगवान के चरण से निकलने वाले जल ने। प्रभु आपके चरण तो महान है ही, परंतु आपके चरणों से जो स्पर्श हो जाना है वह भी महान है। देखिए जन्माष्टमी आ रही है, भगवान का अभिषेक होगा, जितना जल आएगा पी लेना, जितना अवसर आएगा, वहां ये मत कहना थोड़ा थोड़ा ही चाहिए, कुछ लोग होते हैं ना, बहुत सुंदर अवसर भगवान के चरण का धोवन हमें मिलेगा तो इसका लाभ ले लेना चाहिए। और अक्रूर जी कहते हैं अंत में, देव देव जगन्नाथ, हे देवादिदेव, हे देवानाम देव, हे देवताओं के भी देव। इस संसार में कुछ लोग देवताओं का की पूजा करते हैं, परंतु देवता जिसकी पूजा करते हैं उसे देव देव कहा जाता है। प्रभु आपकी देवताओं भी पूजा करते हैं, और जगन्नाथ कृष्ण को। अब देखिए ये जगन्नाथ जी जो है, बड़ी बड़ी आंखें वाले, ये कौन है? ये अक्रूर जी सीधा भागवत में कर रहे हैं जगन्नाथ कृष्ण को। ये जगन्नाथ जी और कोई नहीं, साक्षात कृष्ण है, कृष्ण ही जगन्नाथ जी के रूप में कन्वर्ट हुए। लेकिन प्रश्न हो सकता है, कृष्ण तो इतने सुंदर दिखते हैं, ये जगन्नाथ जी की मोटी मोटी आंखें, हाथ अंदर चले जाना, पांव न होना, ये सब क्या है? इसके पीछे भी बहुत बड़ी कथा है, ये सब द्वारका लीला है, यहाँ मथुरा लीला चल रही है। अगले साल द्वारका लीला होगी तब ये कथा सुनिएगा आप लोग, परंतु इतना ही सुनिए, राधा के विरह में कृष्ण का जो स्थिति है, राधा के विरह में कृष्ण की जो स्थिति है वही है जगन्नाथ। राधा विरह विदुर, तो हे जगन्नाथ, हे जगतान जगताम नाथ इति जगन्नाथ, जो पूरे जगत के नाथ हैं उसे जगन्नाथ कहते हैं। पुण्य श्रवण कीर्तन, आपकी बात छोड़ दीजिए, आपका नाम लेने से व्यक्ति के हृदय में पवित्रता आ जाती है। यद उत्तम श्लोक नारायण नमस्तुते, जब भगवान ना कह रहे थे कि अक्रूर जी मैं आपके घर पर नहीं आऊंगा, तब अक्रूर जी कृष्ण कृष्ण छोटे हैं, अक्रूर जी उनके चाचा है, अक्रूर जी ने दंडवट कर दिया, दंडवट प्रणाम, और दंडवट करते हुए कहा कि हे जगन्नाथ मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, हे देवादिदेव मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, हे नारायण जी आप ही नारायण हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कृपया करके आप मेरे घर पर आइए, दंडवट। इस प्रकार से जब भगवान के चरणों में दंडवट किया, तब भगवान बोले, श्री भगवान उवाच, जब अक्रूर जी ने इस प्रकार से प्रार्थना की और प्रणाम किया, तब भगवान ने कह दिया, आयासी आऊंगा। और इतना कहे अक्रूर जी प्रसन्न हो, आयास्य भवतो गेहम, भवत भवत माने मैं, ये द्विवचन में है, भगवान जो है एक वचन में, भवत द्विवचन में, इसका अर्थ है कृष्ण ने कहा कि मैं और दाऊ जी बलदेव जी हम दोनों आपके घर पर आए। अक्रूर जी ने कहा कि ये ब्रजवासी नहीं आएंगे? बोले नहीं, ये कंस का वध हो जाने के बाद ये लोग चले जाएंगे। इतना शान से बोल रहे हैं कृष्ण, पूरे मथुरा के सब लोग खड़े हैं, बोले ये लोग नहीं आएंगे? बोले कंस को मार देने के बाद ये सब चले जाएंगे। कृष्ण को डर नहीं है, बिंदास करो कंस निर्वंश, मिटी दो नाम निशानी रे, ये कंस जो है ना पूरे वंश के साथ उसको मिटा डालूंगा, उनका नामो निशान मिटा दूंगा, देखते रहना तुम लोग। कृष्ण ऐसा कहते थे, कह दिया कि हम दोनों आएंगे आपके घर पर, अहम आर्य समन्वित, बड़े भाई के साथ में आऊंगा, यदुश्चक्र ब्रह्म हत्वा, मैं कंस का वध करूंगा और वीरस्तिष्ये सुहत प्रियम, और इस संसार के सभी लोगों को प्रसन्न करूंगा, मेरे भक्तों को सुख प्रदान करूंगा, मेरे पिता को कारागार से मुक्त कराऊंगा, और जितने भी राजा महाराजाओं को कंस ने पकड़ कर रखा है सबको मुक्त कराऊंगा, और कंस को मारने के बाद मैं आपके घर पर आऊंगा। वास्तव में कृष्ण ने मथुरा में दो जन को वादा किया था घर पे जाने का, एक अक्रूर जी को और एक कुब्जा को, और भगवान श्री कृष्ण अपने वादे के अनुसार कंस को मारने के बाद तुरंत नहीं गए, भले देर सही परंतु भगवान गए। भगवान श्री कृष्ण बलदेव जी को लेकर अक्रूर जी के घर पर गए और उद्धव जी को लेकर कुब्जा के घर पर गए, देर ही सही परंतु भगवान अपना वादा पूरा अवश्य करते हैं, नमे भक्ता प्रणश्यति, ऐसा कहे कि आप जाइए। सुखदेव गोस्वामी कमेंट्री देते हैं, एवं मुक्तो भगवता, भगवान ने जब ऐसा कहा सक्रूरो विमना इव, तो अक्रूर जी के मन अक्रूर जी विमनस्व हो गए, थोड़े से नर्वस हो गए, नर्वस इस बात का कि ठीक है प्रभु आएंगे हमारे घर पर लेकिन अभी नहीं आ रहे हैं। लेकिन पुरीम प्रविष्ट कंसाय, अक्रूर जी अकेले मथुरा में चले गए, सबसे पहले कंस के पास गए, कंस को बताया कि कृष्ण बलदेव बलराम आ गए हैं मथुरा में घूम रहे हैं और आप कहोगे उस समय से आपके पास आ जाएंगे। कंस को सारा समाचार देकर कर्मा वेद्यम गृहम ययो, अक्रूर जी फिर अपने घर पर चले गए। देखिए यहां पर एक महत्वपूर्ण बात आचार्यगण अपनी टीकाओं में लिखते हैं, बस यहां पर सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया कर्मा वेद्य गृहम ययो, अक्रूर जी अपने घर पर चले गए। अब इसके बाद अक्रूर जी दशम स्कंद में कभी घर से बाहर नहीं निकले, इस अपने घर पर चले जाने के बाद अब सेमंतक मणि के प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी इसको घर से बाहर निकालेंगे। इसका अर्थ है कि अक्रूर जी घर पर गए क्यों और घर पर एंगेज हो गए, क्योंकि अक्रूर जी को कृष्ण ने वादा किया था मैं आऊंगा, और अक्रूर जी सोचे कि कृष्ण हमारे घर पर आएंगे तो घर थोड़ा अच्छा होना चाहिए ना, तो कृष्ण के लिए अपना घर कंस्ट्रक्शन करने लगे, यहां पर डाइनिंग रूम बनाए, हॉल बनाए, बेडरूम बनाए, ये बनाया, और इतने बिजी हो गए जब भगवान ने कंस का वध किया उस रंग महल में बहुत लोग बैठे थे लेकिन अक्रूर जी का जिक्र नहीं हुआ है। उस समय भी अक्रूर जी अपना घर बनाने में ही एंगेज थे, कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना घर बनाने में इतने मग्न हो जाते हैं, न तो मंदिर जाते हैं न कहीं जाते हैं, तो अक्रूर जी, परंतु अक्रूर जी हमसे कुछ अलग है। देखिए यहां पर हमारे लिए बहुत सुंदर उपदेश है, हमें घर बंगला इत्यादि बनाना चाहिए परंतु भावना क्या होनी चाहिए कि हम इस घर में भगवान को बिठाएंगे। साधु संत प्रभु ना हम जिसके घर पर रुके हैं, साधु संप्रभु नाम, वास्तव में मैं सोलापुर में आकर बहुत प्रसन्न हुआ, और केवल साधु संप्रभु नहीं उनके उनके भाई के घर पर गया तो स्पेशल भगवान श्री कृष्ण के लिए एक अलग से रूम बनाया है। आज कौन ऐसा सोचते हैं, आज तो कृष्ण के लिए कोई मंदिर मंदिर इतना छोटा सा मंदिर होता है और वह भी किचन में होता है, आप धुआं खाते रहो, भोजन हम लोग खाएंगे, कुकर की सीटी बजेगी बस धुआं आप खाओ। अरे हम लोग एसी में रहते हैं, हम लोग बेड पर सोते हैं, तो भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति हैं, क्या उनके लिए अच्छी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। घर बनाना घर को सजाना ये कोई बुरी बात नहीं है, परंतु भावना का अंतर है। यदि हम इस भाव से घर को सजाते हैं कि ये घर बनाकर मैं इसमें रहूंगा, मैं बेटर फैसिलिटी का उपभोग करूंगा, तो घर बनाना पाप है। परंतु वही घर यदि हम यह भावना से बनाते हैं कि कृष्ण के लिए हम बना रहे हैं, घर बनाकर फिर भक्तों को बुलाएंगे, प्रवचन करेंगे, तो वह घर बनाना भी भक्ति हो गया, भक्ति। लेकिन दुर्भाग्य आज लोग अपने घर को मंदिर बनाना नहीं चाहते हैं, लोग अपने घर को होटल बनाना चाहते हैं। होटल जैसा होना चाहिए, होटल जैसी सुविधा होनी चाहिए। वास्तव में संसार में पूरा लोग कहते हैं कि हम लोग प्रगति कर रहे हैं, लेकिन विचार करो तो पता चले ये प्रगति नहीं, हम लोग दुर्गति के रास्ते में, दुर्गति के रास्ते। पहले के जमाने में क्या होता था, सब लोग घर पर भोजन करते थे और ये लेटरिन टॉयलेट जो भी था वो दूर खेत में जाकर सब करते थे, भोजन घर पर करते थे और बाकी का काम बाहर जाकर करते थे। और आज लोग क्या करते हैं, भोजन बाहर करते हैं और लेटरिन घर पे आकर जाते हैं। कहते हम प्रगति कर रहे हैं, प्रोग्रेस, क्या है प्रोग्रेस है। पहले के जमाने में सब्जियां बेचने वाले घर पर आते थे, आज सब्जियां जो है रोड पर बिकती हैं। जिस सब्जी को भगवान को भोग लगाना है, धुआं धूल उड़ती है, सब्जी रोड पर बिकती है और बिकती है, और जूते एयर कंडीशन शोरूम में बेचते हैं। यह है प्रगति। आज लोग प्रोग्रेस माने क्या जानते हैं, सोलापुर का तो पता नहीं है, मुंबई में प्रोग्रेस माने जितना छोटे कपड़े पहनेंगे उतना आप प्रोग्रेस कर रहे हो, जितना छोटे छोटे कपड़े होते जा रहे हैं उतना प्रोग्रेस सोचते हैं, प्रोग्रेस नहीं है, दुर्गति है। तो हमारे घर को मंदिर बनाना ये भी एक भक्ति है। तो अक्रूर जी अपने घर पर चले गए और घर को सजाने लग गए क्योंकि कृष्ण आने वाले थे। अब यहां वर्णन करते हैं कृष्ण क्या कर रहे हैं। कहते हैं भगवान, तदंतर भगवान श्री कृष्ण तीसरे पहर अर्थात अक्रूर जी लगभग 12-1 बजे पहुंचे थे और भगवान श्री कृष्ण फ्रेश होकर 3-4 बजे बलदेव जी और अपने सभी जो मित्र सखा थे उन सब को लेकर मथुरा देखने के लिए निकल गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण अकेले नहीं गए, अथ अपरांगे भगवान कृष्ण शंकर क्षण अन्वित। कृष्ण जो थे शंकर क्षण के साथ बलदेव जी के साथ गए। देखिए बलदेव जी को कहा गया था जब गोकुल से निकले तो बलदेव जी को कहा गया था कि कृष्ण को 1 सेकंड के लिए भी अलग मत छोड़ना, साथ में रखना, साथ में रहना। बलदेव जी जो है कृष्ण के बड़े भाई हैं और वात्सल्य भाव में कृष्ण की सेवा करते हैं। ब्रज वृंदावन में बहुत सुंदर कथा आती है कि जब कृष्ण बलदेव सब गोपाल सखा गैया चराने के लिए निकलते थे तो रोज सुबह कृष्ण तो चंचल थे, यशोदा की बात नहीं मानते थे, तब यशोदा बलदेव जी को बिठाती थी, बलदेव जरा बैठ, कृष्ण को कांटे के ऊपर मत चलने देना, उसको झाड़ियों में मत जाने देना, गाय के साथ मस्ती मत करने देना, मनाती थी, और यमुना में उसे दूर जाने मत देना, ऐसे 1.5 घंटे तक प्रवचन करती थी और फिर भेजती थी कि ध्यान रखना कृष्ण, और डेली रोज। और यशोदा के कहने पर बलदेव जी भी कृष्ण का ध्यान रखते थे। कृष्ण मान लो यमुना के किनारे जाते थे, हे कृष्ण वहां क्या कर रहे हो, चलो अंदर आओ पीछे आओ। बलदेव जी बहुत रिस्ट्रिक्शन होता था कृष्ण को, बलदेव जी का, इसलिए कभी कभी गोपियों को मिलने के लिए जाते थे तो बलदेव जी को चखमा देकर चले जाते थे। भागवत में वर्णन है कि कृष्ण ब्रज में जितनी बार गए बलदेव जी के साथ गए, परंतु 2 लीला में कृष्ण बलदेव जी को, 2 दिन कृष्ण बलदेव जी को लेकर नहीं गए, 11 वर्ष में 2 दिन बलदेव जी को लेकर नहीं गए, क्योंकि यदि बलदेव जी को लेकर गए होते हैं तो बलदेव ये 2 लीला कभी न होने देते। 2 दिन कब, 1 दिन कृष्ण जान गए थे कि आज जंगल में दावा अग्नि लगने वाली है, जंगल में दावानल, पूरा जंगल में आग लगने वाली है और उस आग को बुझाने के लिए मुझे उस आग को पीना होगा, और बलदेव साथ में रहेगा तो माचिस की तीली भी नहीं जलाने देता है, वह आग क्या पीने देगा। आपको पता है प्रभुपाद जी ने पोस्टर बनाया है कृष्ण आग पी रहे हैं, इसलिए उस दिन कृष्ण ने बलदेव जी को योग माया में सुला दिया और अकेले गए ब्रज में, और उस दिन दावा अग्नि लगी कृष्ण आग पी। और एक लीला में कृष्ण ने सोचा कि संसार में जो व्यक्ति मेरा नाम ले लेता है इस भवरोग से, इस संसार के सभी भय से मुक्त हो जाते हैं, मेरा नाम लेने वाला व्यक्ति सभी भय से मुक्त हो जाता है, जहां मैं साक्षात रहता हूं और लोग दुष्ट कालिय नाग से भयभीत है वो नहीं सकता, आज तो कालिय का मर्दन कर दूंगा। लेकिन सोचा ये बलदेव साथ में होगा तो यमुना में जाने नहीं देगा, यमुना में कूदने नहीं देगा, क्योंकि उस यमुना में जाने के लिए बहुत लंबी छलांग लगानी थी, इसलिए उस दिन भी बलदेव जी को सुला दिया और कृष्ण अकेले गए और यमुना में। तो इस प्रकार बलदेव जी प्रायः कृष्ण कहीं भी जाते थे तो बलदेव उसे खींच लेते, हे कृष्ण यहां आओ, नदी के पास जाते थे, हे कृष्ण यहां आओ, कृष्ण को बलदेव जी खींच लेते थे, इसलिए बलदेव जी का एक नाम हुआ संकर्षण, समकर्षण, सम्यक रूपेण कर्षण, कर्षण माने खींचना, जैसे मैग्नेट होता है लो चुंबक तो खींच लेता है, वैसे बलदेव जी कृष्ण को खींच लेते थे, इसलिए यहां पर इस श्लोक में भी बलदेव जी को संकर्षण कहा गया। संकर्षण के साथ गए मथुराम प्रविशद गोपे विवक्षु परिवारित। अब मथुरा में प्रवेश, अब मथुरा नगरी का आप लोग दर्शन कीजिए कृष्ण की आंख से। आइए मधुर स्वर संगीत के साथ मथुरा नगरी का हम श्रवण करें। बहुत सुंदर सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है मथुरा नगरी का।
ददर्शताम स्वाटिक तुन्न गोपुर द्वाराम बृहद हेम कपाट तोरणम ताम्रार कोष्ठम परिकासरादस उदाम रम्यो पवनोपशोभितम।
सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, कृष्ण और बलदेव और सभी सखा मथुरा की नगरी में जा रहे हैं। उस मथुरा की नगरी में कृष्ण ने क्या देखा, कहते हैं ऊंचे ऊंचे प्रधान दरवाजे देखे। उस मथुरा नगरी में बड़े बड़े महल थे और महल के जो प्रधान दरवाजे अर्थात हम लोग मेन डोर कहते हैं ना, मेन दरवाजा, तो मेन डोर जो था बहुत ऊंचा था और फाटक वाली बड़ी बड़ी ही सोने की किवाड़े देखी। और मेन डोर के साथ एक जाली होती है ना, हमारे घर पर कोई भी अतिथि आते हैं तो पहले जाली खोलते हैं, तो मथुरा में और हमारी जो जाली होती है वो लोहे की होती है या स्टील की होती है, परंतु मथुरा में जितनी भी जाली थी वह जाली सोने की बनी हुई थी। और मथुरा की जो बड़े बड़े भवनों की जो दीवारें थी, उस दीवारों को कोई तोड़ न दे, कोई चोर न आ जाए, यहां तो दीवारें पत्थर कंक्रीट सीमेंट और ईंट की बनती हैं, परंतु मथुरा के उस महल की दीवारें तांबे और पीतल से बनी हुई थी। विचार कीजिए कितना समृद्ध होगा मथुरा। उस मथुरा में बड़ी बड़ी खाई थी, बहुत सुंदर बगीचे थे, बहुत सुंदर उपवन था। आगे कहते हैं
सौवर्ण सिंह तहर्म्य निष्पुर श्रेणी समाभी भवने रूपस्कृतम त्रिदेव वद्वा मलनील विद्मे मुक्ता हरिर्बिल मोशो विदेश।
बहुत सुंदर सजे हुए चौराहे थे, जैसे चौराहा होता है हमारे शहर में, बहुत सुंदर सजा हुआ चौराहा था, बड़े बड़े धनियों के महल थे, सुंदर कारीगरों के रहने के लिए स्थान थे, है ना, गवर्नमेंट अपने कर्मचारियों को रहने के लिए कुछ स्थान बनाते हैं, परंतु मथुरा में बहुत सुंदर स्थान थे, बहुत सुंदर सभाघर को देखा। सभाघर माने पार्टी हॉल, भगवान ने बहुत सुंदर सभाघर को देखा। और उस मथुरा में जितने महल थे, महल में चबूतरे होते हैं और छज्जे होते हैं, छज्जे जानते हैं ना, खिड़की के ऊपर, वे सभी छज्जे और चबूतरे हीरे स्फटिक नीलम मूंगे मोती और पन्ने से बने हुए थे। मथुरा में छज्जे हीरे और मोती से बने गए थे, सुंदर जरोखे थे, फर्शों पर बैठे हुए कबूतर सुंदर दिखाई देते थे, भौरों की गुंजन बाजारों में बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही थी। वहां पर बहुत सुंदर बाजार को देखा, बहुत सुंदर मार्केट को देखा, बड़े बड़े मॉल थे। और उस नगरी में बिखरे हुए सुंदर चावल को देखा, सब लोगों के द्वार के ऊपर दही और चंदन से चर्चित फल लगे हुए थे। आज मैं कल में जब यहां से जा रहा था तो मैंने देखा कि जहां साधु संत प्रभु रहते हैं उस कॉलोनी में सभी घर पर एक कलिंगर लटका हुआ था। तो मैंने पूछा, ये कलिंगर क्यों लटका है? तो बोले, वो कलिंगर नहीं है, वो कोई फल है। कौन सा फल है मैं नहीं जानता हूं। एक शुभ चिंतक है। वैसे उस मथुरा के सभी लोगों के द्वार के ऊपर ये फल लटके हुए थे, दीप से युक्त सभी लोगों के द्वार के ऊपर दीप जल रहे थे, सभी लोगों के घर पर सजे हुए वृक्ष थे, सभी लोगों के द्वार पताका से सजे हुए थे। पताका जानते हैं, जब कोई फेस्टिवल होता है तब त्रिकोण पताका लगाई जाती है। मथुरा का वर्णन, म्यूजिक बदल सकते हैं कुछ अच्छा बजाए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पताके थे और रेशमी वस्त्रों से भरे हुए बहुत सुंदर द्वार, क्या कहते हैं तोरण, हिंदी में क्या कहते हैं सर, बहुत सुंदर डिजाइन किए हुए रेशमी वस्त्र। और उस समय भगवान श्री कृष्ण बलदेव जी के साथ मथुरा में घूम रहे थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजन, वसुदेव के उस दोनों पुत्र और सखाओं के साथ राजमार्ग से कृष्ण को आते देखकर सभी स्त्रियां अपने घर से दौड़ दौड़कर कृष्ण को देखने के लिए आई और सभी लोगों को पता चला कि कृष्ण हमारे मार्ग से आ रहे हैं, कृष्ण हमारे मार्ग से आ रहे हैं। तो सभी स्त्रियां कृष्ण का दर्शन करने के लिए आई और इतनी उतावली होकर आई, कुछ स्त्रियां अपने वस्त्र उल्टा पहन ली। होता है ना, कभी 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 हमें भी ऐसा होता है, प्रवचन में जाना होता है तो ये गंजी जो होती है बनियान, ये उल्टी पहन लेते हैं, फिर सोचते हैं निकालेंगे तो देरी हो जाएंगे, उल्टे अंदर कौन देखता है। तो कृष्ण को देखने के लिए सब लोग अपने गहने पहनना भूल गए, कुछ लोग पांव के गहने गले में पहन लिए, गले के गहने पांव में पहन लिए, सब लोग उतावली होकर कृष्ण का दर्शन करने के लिए। कुछ स्त्रियां भोजन कर रही थी तो उसमें से आवाज आई, कृष्ण रास्ते से आ रहे हैं, अपना भोजन छोड़कर दौड़ कर आए। और यहां तो दर्शन या आरती का शंख बजे या घंटी बजे कुछ भी हो, भोजन करने बैठे हैं, पहले भोजन करेंगे फिर सब भजन। भूखे भजन नहीं गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। लेकिन कृष्ण को देखने के लिए भोजन कर रही थी, भोजन छोड़कर। कुछ स्त्रियां ब्यूटी पार्लर में बैठी थी, मैंने ये श्लोक, अब मुझे श्लोक गाने नहीं आ रहा है इनके साथ, इसलिए मैं श्लोक नहीं गा रहा हूँ, केवल अनुवाद कर रहा हूँ। कुछ स्त्रियां ब्यूटी पार्लर में बैठी थी, सुखदेव गोस्वामी कहते, और ब्यूटी पार्लर में बैठकर क्या कर रही थी, ब्यूटी पार्लर में बैठ जाती है स्त्री, और उपटन लगा रही थी। उपटन माने, अब आप लोगों को ज्यादा पता होगा, अपनी त्वचा को चमकाने के लिए कुछ फेशियल होता है, ब्लीचिंग होता है, और फिर बाद में चंदन का लेप होता है। पहले के जमाने में जड़ी बूटी का लेप होता था, इसमें केसर होता था, चंदन होता था, उसे उपटन कहा जाता है। तो मुंह पर, हाथ पर उपटन लगाया हुआ था, ब्यूटी पार्लर में आवाज गई कृष्ण आ रहे हैं, तो ये उपटन को धोकर जाना चाहिए ना, तो उपटन के साथ साथ निकल गई कृष्ण को देखने। भूत जैसी लग रही होगी, लेकिन कुछ भी हो, कृष्ण का दर्शन करने के लिए सब लोग दौड़ी हैं। कुछ स्त्रियां आराम से सो रही थी, चैन की नींद, लेकिन उसे पता चला कि कृष्ण आ रहे हैं, ये सुनकर वो फट से जग गई और कृष्ण को देखने के लिए चली गई। यहां तक कुछ स्त्रियां अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को दूध पिला रही थी, पता चला कृष्ण आ रहे हैं तो उस दूध पीते हुए बच्चे को छोड़कर कृष्ण का दर्शन करने के लिए चले। बस आप देखिए, इसे कहते हैं कृष्ण भक्ति। क्या ये स्त्रियां पागल हो गई है? कृष्ण के लिए, कृष्ण का दर्शन करने के लिए अब अपने दूध पीते बच्चों को छोड़कर कृष्ण के पास गए। और यहां हम कहते हैं आप कथा में क्यों नहीं आते हो, बच्चे की एग्जाम चल रही है, बच्चों की परीक्षा चल रही है। अरे बच्चों की परीक्षा है कि तुम्हारी परीक्षा है? बच्चे को पढ़ने तो तुम तो आओ कम से कम कथा में, मंदिर में। परंतु बहाना बनाते हैं, एक्सक्यूज बनाते हैं, वास्तव में ये भक्ति नहीं है। कृष्ण के लिए अपना सर्वस्व छोड़ देना, सर्वधर्मान परित्यज्य कर देना, यह है शुद्ध भक्ति। गोपियों ने भी अपना सब कुछ छोड़ा, ये मथुरा की महिषियों ने भी अपना सब कुछ छोड़ा और छोड़कर कृष्ण का दर्शन के लिए आए। छोड़ना चाहिए भक्तों, इस संसार में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। जैसे मेरे हाथ में ये ग्लास है और इस ग्लास को छोड़कर मुझे इस माउस को पकड़ना है, तब मैं सोचूं कि ग्लास को भी पकड़ू और माउस को भी ले लूं तो ये कभी हो सकता है? कभी नहीं। इसको पकड़ने के लिए ग्लास को छोड़कर ये पकड़ हाथ में आएगा ना। वैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हम भगवान को पकड़ेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे, लेकिन संसार को नहीं छोड़ेंगे। गाड़ी बंगला ये सब तो चाहिए, ये कभी हो नहीं सकता, छोड़ना हो। और उसमें भी हमारे भक्ति में जो बाधा बनते हैं उसे तो तुरंत छोड़ देना चाहिए। एक बार मारवाड़ में रहने वाली मीराबाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि हे गोस्वामी जी, मेरे घर में मैं कृष्ण की भक्ति करना चाहती हूं, परंतु मेरे स्वजन भक्ति में बाधा दे रहे हैं, क्या करूं? गोस्वामी ने उत्तर लिखा, यदि आपके स्वजन भक्ति में बाधा दे रहे हैं तो तजिए कोटि वैरी सम, करोड़ों शत्रु के समान उस स्वजनों को त्याग दो, जद्द भी परम स्नेही, भले वह कितने भी प्रिय हो, स्नेही हो, त्याग नहीं। संसार के लोग हमसे प्रेम करते हैं परंतु प्रेम करना भी नहीं जानते। रास्ते में चाय पी रहे हैं और कोई आ गया, कहते हैं आधी चाय करो और पिलाते हैं, चाय पीजिए, चाय पीजिए। कितना प्रेम से चाय बांटते हैं, हमने तो देखा है, कोई पहचान नहीं है, कोई जान पहचान कुछ नहीं है, लेकिन कहते हैं चाय लीजिए। भक्त लोग इतना प्रेम से प्रसाद भी नहीं बांटते हैं और ये लोग चाय बांटते हैं, सोचते हैं कि नहीं ये प्रेम हो रहा है, ये प्रेम नहीं है। गुटखा खाते हैं तो आधा आधा करते हैं, आधा, और उसको नहीं खाना है तो जबरदस्ती, अरे खा लेना, एक टुकड़े में क्या होगा, सोचते हैं कि मैं प्रेम कर रहा हूं, परंतु ये प्रेम नहीं है, तो अधोगति है। संसार के लोग प्रेम करना नहीं जानते, वास्तविक प्रेम उसे कहा जाता है हमारे प्रेमी की आत्म उन्नति के बारे में सोचे, ये तो अधोगति है। तो संसार में कितना भी प्रेम करने वाला व्यक्ति हो तुरंत छोड़ देना चाहिए। मीरा बाई ने दूसरा पत्र लिखा, यदि छोड़ दूंगी तो संसार के लोग क्या कहेंगे। तो मीरा बाई गोस्वामी जी उत्तर देते हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस संसार में अनेक लोगों ने अपने स्वजनों को त्यागा है, बलि महाराज ने अपने गुरु को त्यागा, क्या बलि महाराज का अपमान हुआ। अरे गुरु को त्याग कर बलि महाराज भगवान को प्राप्त कर लिए। भरत जी ने अपनी मां को त्यागा, भरत महतारी। प्रहलाद ने अपने पिता को त्यागा, ध्रुव ने अपने स्वजन को त्यागा। कृष्ण के लिए यदि त्यागना भी पड़े तो वह भक्ति है। ये सब स्त्रियों ने सब को त्यागा और सब लोग त्याग कर कृष्ण का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अब कृष्ण का दर्शन कैसे होगा, कृष्ण कैसे दिखते हैं, और बस अब ये स्त्रियां कृष्ण का दर्शन कर लेगी और फिर हमारी वास्तविक कथा शुरू होगी मारने काटने की। अब तक ये आर्ट मूवी था, आर्ट, लेकिन एक्शन मूवी कल से शुरू होगा। अब कृष्ण सोचेंगे कि यार हम तो गांव से आए और ये गांव के वस्त्र धोती कुर्ता ठीक नहीं है, यहाँ शहर में आए तो शूट वूट होना चाहिए। 10-15 धोबी आ रहे थे सामने से, कृष्ण ने कहा ए धोबियो, दो अच्छे कपड़े दे देना मेरे लिए और मेरे भाई के लिए, तुम्हारा कल्याण हो, आशीर्वाद दिए। बहुत शरीफाई से, बहुत प्रेम से कहे कृष्ण, देखो तुम्हारा कल्याण हो, भद्र हो, तुम सुखी होंगे, हैं, दो जोड़ी कपड़ा दे दो मेरे लिए और इसके लिए बलराम के। उसने सीधा सीधा ना कह दिया होता कि हम नहीं देंगे, नहीं देना चाहते, तो ठीक था, भगवान छोड़ भी देते। लेकिन वो 5 श्लोक में कृष्ण को गाली दिया, तुम सालों गांव से आ जाते हो, न जाने यहां शहरों में कपड़े पहनने का कोई ढंग नहीं है, ये है और वो है, कृष्ण को बर्दाश्त है। अरे यार शहर में अपनी वैल्यू ही नहीं है, और सबके सामने यदि कोने में बुलाकर 2-3 थप्पड़ भी मार दिया तो चलता, लेकिन सबके सामने अपनी इंसल्ट कृष्ण सहन नहीं कर पाया और जोर से एक तमाचा मारे है, गर्दन से मस्तक अलग हो गया और मर गया धोबी। और दूसरे धोबी ने देखा सब लोग अपने कपड़े छोड़कर चले गए। ये कथा आएगी, धोबी की, सुदामा माली की, कुब्जा की, कुबलिया पीड़ हाथी को उठाकर फेंकेंगे, तो ये सब कथाएं कल से आने वाली है। आप सब भक्तों से निवेदन है यहाँ पर आइए, कथा सुनिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।